प्रेमनंदे हरीब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जये मोदीरये श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनंदलीला मायावी ग्रहाय हेमांग दिव्यं सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते भावराधिका माधुरी आस्वादन सुख काज जय श्री कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रगटे ब्रजरा आप सभी भक्ति रस सिद्धांत पिपासु वैष्णव भक्तिमती वैष्णवी मातृशक्ति का श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला आठवां अध्याय रामानंद राय संवाद के इस तृतीय सत्र में हम हृदय से स्वागत करते हैं और भूरी भूरी धन्यवाद देते हैं। ये जो भक्ति रस सिद्धांत श्रवण में आप सबकी रुचि अनुराग है, मनुष्य जीवन भगवान श्री कृष्ण को, उस कृष्ण के साथ हमारे दिव्य संबंध को समझने के लिए मिला। विधान सूत्र की प्रथम सूत्र में वर्णन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण अवतार है, कलयुग के जीवों पर करुणा करके महावदान्य रूप लेकर जानवी तटवने जग मन लोभा, हम गाते हैं माता सची और जगन्नाथ मिश्र के यहाँ जब प्रकट हुए, कविराज महानुभाव ने लिखा है कि गौर आविर्भाव के दिन हरि हरि बोले भासे त्रिभुवन। पूरे त्रिभुवन में क्या शब्द गूंज रहा था? हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। सबको हरि भक्ति रस में निमज्जित करने के लिए श्री गौरांग भूतल पर आए हैं। इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, अवतीर्ण गौर चंद्र विस्तीर्ण प्रेम सागर। ये गौर चंद्र अवतार लिए प्रेम सागर का विस्तार करने के लिए। पर यत्र, फिर आगे लिखते, यत्र न निमज्जंती, लेकिन अभागे दुर्भागे लोग इस गौरांग के प्रेम भक्ति रस समुद्र में निमज्जित, मतलब स्नान करना तो दूर, आचमन भी नहीं कर पाते। और मज्जति अनर्थ सागर है, और कहां कहां पर अपनी रुचि लेते हैं? अनर्थ के सागर में। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने क्रांति किया, समाज की भ्रांति मिटाकर वास्तविक शांति के पथ को दिखाया कि शांति कृष्ण को समझने में, उनकी शरण में है। ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे जो जानेगा वो शाश्वत शांति निगच्छति, जैसे नवे अध्याय में भी है, पाएगा। तो बस इसी प्रभुपाद की पावन दया करुणा के द्वारा इस्कॉन संस्था मीरा रोड के अंतर्गत हम ये ब्रह्म उत्सव की शुरुआत में चैतन्य चरितामृत कथा अमृत आस्वादन कर रहे हैं, जिसका विषय बड़ा ही तत्विक, दार्शनिक और बड़ा रस सिद्धांत से भरा है। लेकिन हम इसको यथामति सरल करते हुए और अन्य साधारण शिक्षाओं को साथ में लेते हुए, आचार्यों के और भगवान के शास्त्रों के गाए हुए श्लोक पदों को स्मरण करते हुए, बस ये श्रवण कीर्तन रूपी साधना कर रहे हैं भगवान की कृपा पाने के लिए। तो ये रामानंद राय के साथ चैतन्य महाप्रभु का संवाद है। भक्तों, संवाद किसे कहते हैं? इसका अर्थ किया जाए, सम उपसर्ग है, मूल शब्द तो वाद है। वाद मतलब एक दूसरे के साथ बोलना, परस्परम बोधयन्ते जो गीता में है, तो आमने सामने चर्चा करना। लेकिन सम्यक वाद है, अच्छी तरह से पूर्ण रूप से वास्तविक तत्व पर चर्चा करना। और ये संवाद जो है वो परस्पर समान स्तर वाले, समान भाव वाले व्यक्तियों के बीच में ही संभव है, अन्यथा विवाद, वाद विवाद एक बड़ा सुना हुआ शब्द है आप लोगों के लिए, लेकिन ये संवाद है, वाद विवाद नहीं है। और जहां संवाद है वहां वाद विवाद का प्रश्न भी नहीं है। इसमें भगवान के तत्व के विषय में साध्य साधन के ऊपर गहराई से विचार विमर्श किया गया है, ताकि वैष्णव के लिए एक पथ प्रदर्शन हो। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र में जो चर्चा किए उसको संवाद ही व्यास जी ने कहा है, कृष्ण अर्जुन संवादे। इति भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवाद। ये दोनों के बीच में क्या हुआ? संवाद हुआ। इससे ये पता चलता है कि कोई गुरु अपने शिष्य को धर्म के अनुकूल सार शिक्षाओं को प्रदान करे, ये भी संवाद है। और भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक में कहते हैं, कि हे अर्जुन अधिष्यन्ति य इमं धर्म संवाद आवयो। ये जो हमारे और तुम्हारे बीच ये जो धर्म का संवाद हो रहा है, अधिष्यन्ति जो इसका अध्ययन करेगा, अधिकार पूर्वक ग्रहण करेगा, किसी परंपरा में आने वाले वैष्णव से, गुरु से श्रद्धा समर्पण भाव से सुनेगा। अधिष्यन्ति च इमं धर्म संवाद आवयो, ज्ञान यज्ञेन तेनाह इष्ट स्यात् इति मे मति। हे अर्जुन, वो ज्ञान यज्ञ से मेरी उपासना कर रहा है, जो इस तेरे मेरे धर्म संवाद को जो भी श्रवण कीर्तन अध्ययन करेगा वो क्या कर रहा है, ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा कर रहा है। तो श्री रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु दिव्य संवाद करने जा रहे हैं, जिसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी महानुभाव ने चैतन्य चरितामृत में यथावत रखा है। जिस प्रसंग के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने जब रामानंद राय को देखा तो मिलन, उसको अखबार में आलिंगन भरने को, उसको छूने को, उसके पास जाने को मन हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेमी थे, और प्रेमी भक्त का दर्शन स्पर्श सानिध्य तो स्वयं ठाकुर जी भी चाहते हैं। जिनका हृदय शुद्ध हो, नवम सरल सब छल हीना, जिसमें कोई छल न हो और जिसका हृदय निर्मल हो, ऐसे भक्तों को तो भगवान भी मिलना चाहते हैं। और जब रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु जी को देखा तो अद्भुत चमत्कार तेज वर्णन है। कल आप सुन रहे थे कि कमल जैसी आंखें हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु का मधुर माधुर्य रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ, और सत सूर्य सम 100 सूर्य के समान तेज निकल रहा था, ये भगवान का ऐश्वर्य भी वर्णन हुआ। ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित है ना, चैतन्य महाप्रभु रसराज महाभाव दुई ध्रुव, रसराज श्री कृष्ण है और महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, वो महाभावमयी है, और चैतन्य क्या है, राधा कृष्ण एक है। और जहां माधुर्य हो वहां ऐश्वर्य अपने आप होता है, लेकिन सम्राट माधुर्य है, सत्ता माधुर्य का चलता है, ऐश्वर्य उनके अनुगत्य में रहता है, लेकिन भगवत्ता का सार माधुर्य है। माधुर्य भगवत्ता सार व्रजे कैल प्रचार तहां शोक व्यासेर नंद। श्रीमद् भागवत में व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी ने ये सार रूप में और बड़ी बड़ी सीक्रेट रूप में दिखाया है कि माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। और चैतन्य महाप्रभु उज्ज्वल वर्ण गौरवर देहम तम प्रणमामि श्री सचितनयम, जो हम सचितनयाष्टकम में गाते हैं, उज्ज्वल वर्ण है महाप्रभु का, क्योंकि तप्त कंचन गौरांगी वर्ण धारण किया है। इसको देखते ही रामानंद राय के मन में, उसके चित्त में एक महासुख हुआ। इस महासुख को व्यक्त करने के लिए कविराज महानुभाव ने शब्द दिया है चमत्कार। देखिया तुमार मने हैला चमत्कार, आप देख सकते हो, देखिया जब रामानंद राय ने देखा चैतन्य महाप्रभु को तो मने हैला चमत्कार। चमत्कार किसे कहते हैं, अवर्चनीय महासुख का हृदय में अनुभव, मतलब इतना आनंद अतिरेक बढ़ जाता है जिसका आप वाणी से वर्णन नहीं कर सकते और ना तो अपने शरीर में इसको संभाल पाते हैं। अदृश्य विषय हो, मतलब जिस व्यक्ति को आपने कभी देखा ना हो, और अश्रुतय और जिस वस्तु को कभी आपने सुना ना हो, और अचानक वो वस्तु आप सुन लो या अचानक वो वस्तु आप देख लो और जिसके आपके चित्त में इतना आनंद आ जाए कि आप संभाल ना पाओ उस आनंद को, और कोई पूछे कि प्रभु जी क्या हो रहा है तो आप वर्णन भी न कर पाओ,
इसको चमत्कार कहते हैं। चमत्कार को मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूं समझाने के लिए। चमत्कार शब्द तो बहुत आप लोग, लेकिन आप समझ सकोगे कि कभी ना देखा ना सुना ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई रूप, ऐसा कोई वाक्य। कभी कभी होता है ना कोई श्लोक, कोई कोई कविता हमें चमत्कार एक सुख देती है, वाह बोल निकल जाता है हृदय से। और रस की परिभाषा श्रीधर स्वामी ने भागवत की बावा दीपिका में चमत्कारी कहा है। रसमालयम शब्द जो है निगम कल्पतरु गलितम फलम, तो रस शब्द है ना चमत्कारी सुखम तदर्थम, एक ऐसा सुख जो कभी अनुभव गम्य न हो और हो जाए। हृदय में एक अद्भुत सुख मिला और क्यों ना मिले। हम जिस गौरांग की कथा सुनकर कीर्तन सुनकर इतना सुख आनंद लेते हैं, उस साक्षात रूप सौंदर्य को जब रामानंद राय अपने नजरों से देख रहे हैं, स्वाभाविक है सुख होना, क्योंकि आनंद सुख का तो ये स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार गौरांग है ना। कविराज जी कहते आसिया उठिल दंडवत नमस्कार, पालखी से उतरे दौड़े और चैतन्य महाप्रभु जी को क्या किए, नमस्कार किए। ये तो एक साधारण वैष्णव विधि से हम सभी भक्त परिचित है कि किसी महापुरुष का दर्शन, वहां पर कोई एक भक्त रहना चाहिए जो यहाँ कोई ना आए, ओके प्रभुपाद जी को प्रणाम वहां से करें जब तक कथा चालू है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। किसी भी वैष्णव गुरु आचार्य को देख के ही दंडवत करना, ये हमारी वैदिक संस्कृति है, साधारण सी बात है। लेकिन नमस्कार करने से हम आदर समर्पण का भाव व्यक्त करते हैं और उनसे कृपा आशीर्वाद की याचना करते हैं। नमस्कार करने में करने वाले का कोई नुकसान कभी जाता, कुछ नुकसान या खर्च होता है किसका होता है, सामने वाले का। फिर भी आज एक रोग है कि सब अपने को नमस्कार करवाना चाहते हैं लेकिन करना, लेकिन उसे ये नहीं पता कि करने से फायदा है करवाने से नुकसान है। अगर ये समझ में आ जाए तो व्यक्ति करेगा और करवाना नहीं चाहेगा, लेकिन पता नहीं क्या सब चाहते हैं कि बस हमें सब प्रणाम करे। वास्तव में प्रणाम करने से भी कोई बड़ा नहीं हो जाता और जो प्रणाम कर रहा है वो छोटा भी नहीं हो जाता। ये सब बाह्य, इन बाह्य जो आडंबर है ना, आडंबर को हमारे गीता में ठाकुर जी ने शब्द दिया दंभ। इससे हम भक्तों को बचना चाहिए। जिसको कृष्ण प्रेमा भक्ति तक पहुंचना है ना, उन्हें इन सब दंभ से दूर रहना चाहिए। वो हमेशा यह चाहता है कि मैं वैष्णव का दास हूं। और रूप गोस्वामी ने कहा है उपदेशामृत के पांचवे श्लोक में, कृष्णे तस्य गिरि तद मनसा द्रियेतत, जिसके मुख में भी एक बार कृष्ण नाम आता है उसको आप मन से आदर दो। भले आप दंडवत न कर पाओ लेकिन मन में आदर करो, क्योंकि ये कृष्ण नाम बोल रहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते भाग्यवान हो रहा है। और अगर उसने दीक्षा ले ली है और सेवा में है तब तो उसको क्या करो, दीक्षा तिचे तत् प्रणत, तब तो उसको आप प्रणाम करो। ये रूप गोस्वामी ने किसको कहा, हम भक्तों को क्या समझना चाहिए, केवल प्रचार करने के लिए कहा कि अपने लिए कहा। इस श्लोक का केवल काउंसिलिंग में चर्चा ही करना है कि हमारे लिए है, पहले ये समझना पड़ेगा ना हमें। ये केवल बोलना और दूसरे को सिखाना ये बाद की बात रहेगी, पहले तो हमारे लिए है। आचार करे न के हो करे न प्रचार वाली बात नहीं, आचार्य रो प्रचार्य रो यही दुई कार्य। सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर को कहा, आचरण भी है और प्रचार। जगतेर गुरु तुम्ही जगतेर आर्य, ये चैतन्य चरितामृत हमें शुद्ध भक्ति की सुंदर शिक्षा देता है। और फिर रूप गोस्वामी वहां तो बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि निंदा आदि शून्य हृदय, जो अनन्य भाव से भजन करता है और निंदा आदि दोषों से शून्य है, तार संग लब्ध्वा। रामानंद राय उस कोटि के भक्त है, इसलिए इस रामानंद राय के संग की कामना स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी कर रहे हैं। देखो भक्तों, अगर भगवान में आपका प्रेम है या फिर भगवान के चरणों में आप प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, है या चाहते हैं, जो भी हो, इसका प्रमाण यह है कि भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में भी आपका प्रेम होना चाहिए। अगर भगवान में प्रेम आदर है और भगवान जिसे प्रेम आदर करते हैं या भगवान को जो प्राण से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसे भक्तों के प्रति आपका द्वेष है, तो आपका वो प्रेम पूर्ण नहीं माना जाएगा। यहां तक भगवान श्री कृष्ण के संदेश उद्धव जी को भागवत में है, मत भक्तव्यो अधिकम पूजा सर्व भूतेषु मन्मति। हे उद्धव, मेरे भक्तों की पूजा तो मुझसे भी बढ़ के होनी चाहिए। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इस तरह का भाव जब भगवान कृष्ण संधि दूत बन के गए ना हस्तिनापुर, तब दुर्योधन को कृष्ण ने कहा, महाभारत में वेदव्यास जी ने बोला, दुर्योधन ने कहा आप हमारे घर आइए, आपके लिए हमने भोजन व्यवस्था किया है, बहुत कुछ बातें हैं लंबी लंबी, लेकिन भगवान ने कहा हम आपके घर नहीं आ सकते। देशात अन्न भोक्तव्यम द्विशम अन्न भोजिए। हे राजन दुर्योधन जी, जो भक्तों से द्वेष करता है उसके यहां हम नहीं खाते। तो दुर्योधन बोला, दुर्योधन तो बाद में बोला, मामा पहले बोला, क्योंकि स्पीकर मामा ही, मेन पावर जनरेटर तो मामा ही था ना, ये तो भोंपू था, स्पीकर था वो, साउंड तो मामा ही था, प्लान मास्टर प्लान मामा का ही चलता था। गांधार नरेश, अरे कृष्ण आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मेरे भांजे का प्रेम नहीं है, रात भर जाग के आपके लिए मिठाई बनाया, आप आने वाले से पूरा हस्तिनापुर सजाया और आप कह रहे हो कि प्रेम नहीं है, द्वेष करते हो। बोले पांडवा नाम मम प्राणा, पांडव मेरे भक्त है और पांडवों से आप द्वेष करते हो, और जो पांडवों से अर्थात मेरे भक्तों से द्वेष करता है अल्टीमेट वो मुझसे ही द्वेष करता है, और जो द्वेषी है उनके घर हम खाते। सीधी बात बोल दी भगवान ने। इन सारे प्रसंगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवान के चरणों तक पहुंचाने वाले ये भगवान के प्यारे भक्त है, और उन भक्तों की सेवा, नरोत्तम दास ने तो कह दिया छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई चुके। ये जो भक्त पद रज है ना, जल है ना, यही तो भक्ति का बल बोला है। प्रहलाद के श्लोक को याद करिए, मही असा पादर जो विषेकम निष्किंचना नाम नवृणी तयाव। जब तक भगवान के प्रेमी भक्तों का रजाभिषेक नहीं होगा ना, तब तक मति कृष्ण में सती नहीं हो सकती, लग नहीं सकती। रघुगण ने भी यही बात बोला है, ये सर्वविदित बात है। तो रामानंद राय नमस्कार कर रहे हैं, ये भी एक हमें सीखने लायक बात है। लेकिन अब सुनिए, कल हम वर्णन भी कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु तो पहले से ही मिलना चाहते थे, भुजाओं में भी भरना चाहते थे, अब आके दंडवत कर रहे हैं तो महाप्रभु खड़े हो गए, चैतन्य महाप्रभु खड़े हो गए, और खड़े होकर क्या कहा, तथापि पूछिल तुमि राय रामानंद। सुनिए, क्या आपका नाम ही राम रामा राय रामानंद राय है क्या? उठी प्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभु खड़े हो गए और उसे पूछे, इसके इसके पहले वाला श्लोक है प्रभु जी, 19-22 के बाद वाला होगा। तो रामानंद राय ने कहा कि हाँ, इस कुछ शूद्र अधम दास को ही राय रामानंद कहते हैं, हाँ हाँ मेरा नाम ही वो है राय रामानंद। अच्छा, आपका नाम ही राय रामानंद है? तबे तारे कैला प्रभु दढ़ आलिंगन, वाला 22 वाला
तदे तारे कैला प्रभु जैसे ही सुना कि मैं ही रामानंद राय हूं महाप्रभु पहले तो खड़े हो गए थे अब क्या किए
आलिंगन में भर लिए
भुजाओं में भर लिए रामानंद राय नाम सुनते ही और रामानंद राय का भी दैन्य देखो वो क्या कहते मैं शूद्र अधम वो ये नहीं कहते हाँ जो मेरी चर्चा होती है ना समझेगा वो मैं ही हूं महाभागवत ऐसा वो भी कहते हैं हाँ ये जो अधम पापी शूद्र जो वो मैं ही हूं। देखिए कितना हमारे गौड़ीय भक्तों का ये जो दैन्य है ना यही आभूषण है वैराग्य और दैन्य हमारे गोस्वामियों के चरित्र में झलकता है और यही सिंगार है साधु का वही शूद्र अधम मैं हूं लेकिन महाप्रभु तो महिमा जानते थे उसकी क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य ने वहीं पर पुरी में ही बोला था कि आप गोदावरी के तट पे जाओ तो उसको जरूर मिलना कभी कभी होता है ना भक्त लोग कहते हैं आप वहां जाओ तो उनसे दूर रहना क्योंकि उस बेचारे को ऐसा अनुभव हुआ होता है दो टाइप का होता है एक होता है वहां जाए तो प्रभु जी उसको जरूर मिलना और कहते वहां जाओ तो उनसे दूर रहना ऐसे दो टाइप का हमारा पर्सनालिटी डेवलपिंग चलता है तो हम किस में है वो भी देखते रहना चाहिए बोले उनसे जरूर मिलना ये बोला था और वही नाम आया कर्ण कुहर में कर्ण के छिद्र में इसलिए महाप्रभु भाव में प्रेम में आ गए आलिंगन में भर लिया। अब इस पर एक सिद्धांतिक बात सुनिए भक्त किसी भी वैष्णव को हम देखे तो हमारा भाव प्राय होना चाहिए कि हम उनके दास है वो हमसे महान और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए प्रणाम करना चाहिए आलिंगन में भरना वो उनका काम है हम ही नहीं आओ प्रभु गुरु को भी आओ गुरु महाराज ये आलिंगन में हमें लेंगे कि नहीं वो किसका काम है वो बड़े का काम है छोटे को चाहिए कि क्या करे दंडवत करे कभी कभी यही लोग सामने से कृपा आलिंगन दो जगह होता है एक तो बड़ा व्यक्ति मतलब जो गुरु स्थानीय है वो व्यक्ति जो प्रणाम कर रहा है उसको उठा के आलिंगन में भरेगा या फिर मित्रता है समान वय के है जैसे महाभारत में वर्णन आया है कि कृष्णचंद्र जब भी जाते थे हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ तो युधिष्ठिर को दंडवत करते थे क्योंकि बड़े है उम्र और अर्जुन से जब भी मिलते थे तो आलिंगन करते थे एक मर्यादा भी होती है ना और ज्ञान में उम्र में ये हमारे आज की भाषा में सीनियर जूनियर शब्दों की बात हम ले छोटे बड़े नहीं सीनियर जूनियर अच्छा लगता है तो उनको ये समझना है बड़े का कर्तव्य है कि कोई चरणों में गिरे उसको उठाए ऐसा नहीं कि गिरे रहो ये उनका दोष है और छोटा आके चरणों में न गिरे और सीधा गले लगे ये इनका दोष है ये बहुत गहरी बात है छोटी बात है लेकिन और इसके लिए श्रोता के लिए भी छोटा दिमाग चालू होना चाहिए क्योंकि भगवान ने हमें दो दिमाग दिया है ना दो दिया है ना एक छोटा दिमाग और एक और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटा दिमाग स्पेयर में ही रखते यूज ही नहीं करते बड़े बड़े से ही काम लेते हैं तो चैतन्य चरितामृत सूक्ष्म छोटे दिमाग का वस्तु है जिससे हम अपराध से बचकर कृपा के पात्र बन सके अन्यथा ये बातों पर नहीं विचार होगा तो अपराध हमें वैष्णव कृपा से विमुख करके हमारी की हुई साधना को भी भस्म कर देगी इसीलिए सावधानी की बात आपको एक प्रसंग सुनाते हैं चैतन्य महाप्रभु जी रामानंद राय को अखबार आलिंगन में भर रहे आलिंगन करना नहीं करना देना नहीं देना ये बड़े की स्वतंत्रता है और वो भी आलिंगन हमारी पात्रता के अनुसार हमें मिलता है चाह तो हमारी होनी चाहिए कि हम गुरु जी सीनियर वैष्णव हमारे सर पर हाथ रखे हमें आलिंगन में हम पर कृपा करे ये भाव अच्छा है लेकिन उसके लिए हमें साधना उनकी आज्ञा में सेवा करनी चाहिए और वो हम नहीं करते हैं आशा तो बड़ी ऊंची है ये कोई कृपा मांगने की वस्तु है एक बाह्य रूप से लेकिन फिर भी वो करे ये ज्यादा महत्व का है हमारे आचरण को देखकर
हमारी साधना सेवा को देखकर। और आचरण साधना शास्त्र से उनकी आज्ञा से बिल्कुल उल्टा हो और हम सर खाते रहे, कृपा करो, सर पे हाथ रखो, आशीर्वाद दो, वो लोग कभी कभी हमारी हिंदी भाषा में कहा जाए कंटाल के कर देते हैं, लेकिन अंदर से कोई कृपा होती नहीं है। ये आप लोग समझ सकते हो, है ना। बाहर से हमें कह देते हैं, इसलिए गुरुजनों के साथ महाजनों के साथ फोटो खिंचवा लेना उनके बाजू में या उनको उनके साथ चल लेना, ये है कुछ मात्रा में बाह्य, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनके दिल में जगह बना लेना और उनकी सेवा और साधना करना। गुरु के चरणों की इस तरह सेवा की जाए कि उसकी हृदय में हमारा स्थान हो, वो गौरव ले कि हाँ शिष्य है, शिष्य है हम, सरदर्द नहीं। कभी कभी कुछ शिष्य सरदर्द हो जाते लेकिन चैतन्य चरितामृत को जो सुनेगा ना, वो भक्ति के उस स्तर तक जाएगा कि भगवान के हृदय में वो राज करेगा। आज रामानंद राय उस स्तर पर है कि महाप्रभु उसको आलिंगन करने के लिए, उसको दर्शन के लिए तरस रहे हैं और इसके लिए इतना दूर चल के आए हैं, वो खुद कहेंगे आगे। तो आलिंगन देना नहीं देना हमारी पात्रता, हमारी साधना के ऊपर गुरुजनों का काम है। ओके, हम छोटों को उसके आलिंगन में नहीं, हमें उसको क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और फिर कभी मित्रता हो समान भक्तों में, तब ये संभव है। और आपको कोई आपका छोटा, आपसे छोटा जूनियर कोई आलिंग कोई प्रणाम करे तो आप उसे आलिंगन दे, क्योंकि एक भक्त कहीं भी हो सकता है, उनके सीनियरों के सामने वो करे, लेकिन उनके साथ हो तो उनको वो आलिंगन, लेकिन उसमें वो स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कि दे ही दे और सबको दिया करे। महाप्रभु भी सबको थोड़ी आलिंगन देते थे, उसमें भी है ना पात्र विचार, स्थान विचार। एक हृदय की वस्तु है जो फोर्स नहीं हो सकता इसके लिए। तो महाप्रभु आलिंगन किए, कविराज जी लिखते हैं इसके आगे, स्वाभाविक प्रेम दुहार उदय करिला। इन दोनों के मध्य में एक अद्भुत प्रेम का उदय हुआ। दुहा आलिंगिया, दुहे भूमि ते पड़िला। और जब प्रेम व्यतिरेक इतना हुआ कि देह सुति नहीं रहा और दोनों भूमि पर। कभी कभी होता है ना प्रेम विकार में, जो ये है मूर्छा तक स्तर, अंतिम स्तर मूर्छा है, रोमांच कंपा अश्रु, ये जो प्रेम विकार है उसमें अंतिम मूर्छा है, उसके पहले गिरना। तो प्रेम विकार भाव में भूमि में गिर गए। और ये तो हमारे भजनों में नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते हुए इत्त बोली भूमि गड़ी गेला सोनार पर्वत जिन भूमि ते, गाया है लोचन दास ने। प्रेम संकीर्तन आनंद में ऐसी अवस्था होती थी। नारद मुनि बजाए वीणा वाले भजन में भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा और लिखा, क्योंकि हमारे आचार्यों ने जो भजन लिखा वो कोई कपोल कल्पना नहीं है। जिस लीला को संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, क्योंकि लीला है ना दो जगह नित्य चलती है, एक भगवान के धाम में और एक भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के हृदय में। पर वो लिखते हैं हम वैष्णवों के ऊपर कृपा करने के लिए। और तब उन्होंने कहा कि जब नारद जी कैलाश में पहुंचे, ये वीणा बजाते हुए राधिका रमण नाम की, पंचवदन नारद धरी प्रेमे रस घन रोला, पंचवदन नारद धरी कमलासन आसिया बोले बोलो बोलो हरि बोलो, कमलासन नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, प्रेमेर सघन रोल। वो नटराज कैलाश अधिपति खड़े हो गए और नारद को गले में भर लिया और दोनों उस कैलाश की भूमि पर क्या हो रहा है, अराउंडिंग्स हो रहा है। हमारा गुजराती में बहुत प्यारो शब्द है गलोडिया मारो। दोनों घूमने लगे, अत्यारे घना बाजार में गलोडिया खवरावी दे छे पण प्रेम में भाव में दोनों कैलाश में लौटने लगे, प्रेम सखन रोला। प्रेम भाव होता है, देह सुधी नहीं रहता, क्या कह रहे। यहां पर भी हो गया, वर्णन आता है। देखो प्रेम में आलिंगन किया, प्रेम में भाव भूल गए, अपना शरीर शुद्धि भी नहीं रहा, और यहां तक लिख दिया है कि स्वेद कंप अश्रु रोमांच भी दोनों के देह में हो रहा था, महाप्रभु के श्री विग्रह में भी और रामानंद राय के विग्रह में। और हम आप लोगों में सत्य वास्तविक बात करें, होगा टाइम लगेगा, इसका पहले से नाटक करना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जो पढ़ लेते हैं ना समझते बस यही सिद्ध अवस्था पर पहुंच ही जाते हैं सीधा। यहां तक वर्णन आया है भक्तों कि जिसमें होता है ना वो भी प्रदर्शन नहीं करता, छुपाता है, और बोलने की तो बात ही नहीं। और हम लोग तो सीधा बोलते, कल गिरधारी मेरे सपने में आए, ले बोलो। नारद जी बोले मुझे नहीं आ रहे है, मुझे जाना पड़ता है, और इनको आ गए। ये जो है ना, ये भावुकता अच्छा है, भक्ति में भाव होना चाहिए, इज गुड, लेकिन दंभ नहीं होना चाहिए भक्त। हमें भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, भक्त है ऐसा दिखाने का नहीं। क्या करना चाहिए? भक्त बनने का हमें सही प्रयास करना है, शास्त्र गुरु आज्ञा में, लेकिन प्रदर्शन नहीं करना। हम मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए, अपना प्रदर्शन करने के लिए नहीं, कि हम क्या है क्या है। देखो भाई, 12 महाजने 13 अब हम ही हो चुके, आपको पता ना हो तो बता ही दे आपको। ऐसे भक्त एक बात से वंचित रह जाएंगे, किससे? गुरु वैष्णव कृपा से, जो उसे कृष्ण प्रेम तक पहुंचाने वाली वस्तु थी, उससे वंचित रह जाए। हमें वही चाहिए, सारी साधना सेवा हम इसीलिए करते हैं कि उस कृपा को पा जाए। सनातन गोस्वामी जब उस नौकरी को त्याग कर और मिलते हुए श्रीकांत से, अपने बहनोई से, जब वाराणसी पहुंचे ना, वाराणसी, तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 23वें अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है, 20वें अध्याय में, 23वें अध्याय में तो दूसरी कथा है, लेकिन 20वें अध्याय में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने चंद्रशेखर आचार्य को कहा कि बाहर कोई वैष्णव आया है, आप उसे अंदर बुला के आओ। सनातन गोस्वामी इतने दैन्य विनम्रता में थे कि उसे पता चला कि महाप्रभु अभी वाराणसी में है, परम सौभाग्य, दर्शन, कृपा, सब लाभ मिलेगा, लेकिन अपने आप को इतना हीन दीन समझते थे कि वो अंदर जाने का साहस नहीं करते थे। हम लोग तो आगे डंडा जगह ढूंढते कि कहीं घुस के बीच में पहले जाओ, मैं आया हूं। और देखिए इतने ऊंचे आचार्य और वो कहां बैठे हैं, दिखाना नहीं चाहते अपने आप को। राम के लिए में जब रूप गोस्वामी से प्रथम मिलन हुआ ना, रूप गोस्वामी ने एक श्लोक बोला है, पढ़ेगा चैतन्य चरितामृत मध्य लीला प्रथम अध्याय, परिहारेति मे लज्जा किं ब्रूहे पुरुषोत्तम, मैं इतना पापी हूं कि आपके सामने बोलने में मुझे लज्जा आ रही, क्या करूं। लेकिन कभी ऐसा फील हुआ हम लोगों को कि अरे महाराज के सामने हम कैसे, हम क्या इस तरह का, ये आडंबर नहीं, ये सुन के भी नहीं, एक हृदय की बात है, इस तरह का भावना, ये बहुत उच्चा शुद्ध हृदय होता है ना। महान चैतन्य चरितामृत में लिखा है, सर्वोत्तम आपना के हीन करिमान, यही उसकी सर्वोत्तमता है। इसको हिंदी में कहे तो हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा हीरा थोड़ी कभी कहता है डायमंड की, भाई मैं 1 करोड़ का हूं, वो तो होता है, वो तो जहर ही जाने, वो थोड़ी अपनी वैल्यू रखेगा। जो असली है वो तो असली है ना, सिंथेटिक सस्ता है, रस्ते का माल सस्ते में तो बहुत जगह है, लेकिन असली असली है। सनातन गोस्वामी की देखिए, ये हमारे आचार्यों से हमें सीखना है ना, शिक्षा लेनी है। कविराज जी वहां लिखते हैं, ताहर अंग ने देखी, बोला कि उसको ही बुला के लाओ, वो फकीर है, दिख रहा है क्योंकि बहुत महीनों से आए थे, दाढ़ी बढ़ गया था, सब था, लेकिन महाप्रभु ने कहा उस चंद्रशेखर आखिर कोई वैष्णव नहीं है, तो महाप्रभु ने कहा कोई वैष्णव लेकिन कोई तो है, बोले हाँ एक दरवान एक फकीर बैठा है जैसा लग रहा है। महाप्रभु ने कहा हाँ उसी को बुला के लाओ। तब इसने कहा कि आपको अंदर महाप्रभु बुला रहे। तब सनातन गोस्वामी गुरु आज्ञा महाप्रभु आज्ञा पालन करने के लिए खड़े हुए और अंदर गए, लेकिन जैसे महाप्रभु ने द्वार से प्रथम बार देखा ताहर अंगने देखी, अंगन मतलब आंगन में वो आए देखा प्रबुधाया आईला, चैतन्य महाप्रभु जहां बैठे थे खड़े हो गए और क्या कहिए दौड़े दौड़ दौड़ लगाए, धाइया समझते ना धाई तव धाई नाम धाना मतलब भागना टू रनिंग वे फास्ट दौड़े, और तार आलिंगन करी प्रेमा विष्ट है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आलिंगन में भर लिया और प्रेम में पिघल गए, जैसे यहाँ रामानंद राय को देख के प्रेमाविष्ट, दोनों जगह प्रेमावेश प्रेमाविष्ट शब्द तो है लेकिन प्रभुर प्रेमावेश विष्ट सनातन। सनातन गोस्वामी ने जब देखा कि महाप्रभु ने मुझे आलिंगन में भर लिया प्रेम भाव में आ गए मोर ना छुइए प्रभु, उसने क्या कहा प्लीज प्लीज आप मेरा स्पर्श मत करिए, आप इतने महान पवित्र और मैं कहां शूद्र अधम, कृपा करके आप मेरा स्पर्श मत कहिए। और ऐसा बोला नहीं जा रहा था क्योंकि सनातन वास्तव में तो शुद्ध साधु थे और उनके कंठ भी क्या हो गया गद गद, जैसे यहां पर भी इसके आगे 20 नंबर श्लोक में आया था कृष्ण कृष्ण बोली गद गद है यार। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु भी क्या हो गए गद गद बोल रहे कृष्ण कृष्ण बोला नहीं जा रहा है, भाव में गला रुन जाता है ना। महाप्रभु इस प्रार्थना को शिक्षाष्टम में कहते हैं कि ऐसा दिन कब होगा नयनम गलदास्त्रधारिया वदनम गद गद, फिर शब्द है रुद्रया गिरा माय वॉइस वेन चौक अप, कब मेरा चौकट हो जाएगा। महाप्रभु चाहते थे तो होता था लेकिन शिक्षा के भाव में, बड़ी ऊंची ऊंची अवस्था है प्रेम भक्ति की। दुई जन गला गली रोदन अपार, सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं और गला गली मिले हुए। देखी चंद्रशेखर हईल बड़ा चमत, चंद्रशेखर तो कभी देखे ही नहीं था इस तरह कि महाप्रभु बहुत लोगों से पूरी वाराणसी में कब से है सबसे मिले, लेकिन इस तरह का मिलना इस तरह का प्रेम जैसे जैसे कृष्ण सुदामा का मिलना देखकर रुक्मणी भी पूछ लीजिए अरे ऐसा मेहमान तो आज तक नहीं आया, इस तरह का भागना और सब पता नहीं रहना और पकड़ लेना प्रेम प्रेम में होता है साख्य में माधुर्य में ये संभव है इस तरह का, दास्य में उस लेवल का नहीं होता शांत में नहीं होता लेकिन साख्य वात्सल्य साख्य और जो माधुर्य है उस रस में भाई संकोच गौरव कुछ नहीं होता। ये जो रूप गोस्वामी ने भाव बताया है भक्ति रसामृत सिंधु में राम अवतार में तो संभव ही नहीं क्योंकि राम अवतार का साक्ष्य जो है वो तो भय संकोच से भरा पड़ा है, संकोच करते रहते विभीषण जी और ये भी ठाकुर जी भी, लेकिन यहाँ तो पूर्णतम साक्ष्य है कृष्ण अवतार में, तो यहाँ आपको दिखेगा मधुमंगल में या व्रज सखाओं में व्रज परिको में क्योंकि व्रज में पूर्णतम प्रकाश है कृष्ण अवतार में, और वही कृष्ण गौर बने और ये तो माधुर्य मंडित सखी मंजरी है उनकी सनातन या रामानंद, ये तो बड़ी ऊंची अवस्था में है आंतरिक रूप में भी तत्व से भी विचार करो तो, और बाह्य रूप से साधारण प्रेमी भक्तों का शुद्ध भक्तों को मिलन के अंतर्गत भी चर्चा करो तो भी बड़ो वास्तविक स्थिति है। हमें क्या लाभ है भाई इनसे, इन स्थिति को इन आचार्यों को सुन के इस कथा से हमारा हृदय शुद्ध होगा, पहला लाभ यह है कि हमारा हृदय शुद्ध होता है ये हमारा लाभ है, और दूसरा हमें इस स्तर तक पहुंचना है कि कब शुद्ध सेवा साधना आज्ञा में करके हम पर भी ऐसी कृपा हो ऐसी वांछा जगे ऐसी लालसा जागृत हो, और ऐसी वांछा जागृत होती है तो गुरु आदेश में शास्त्र आदेश में साधना करने में मन लगे कि पता चल इनसे ये प्राप्त हो सकता है इस विधि से, ये हमारा लाभ है इस कथा के श्रवण से। लेकिन वहां पर लिखा है तबे प्रभु तार हाथ धरी लैया गेला, सनातन गोस्वामी का हाथ पकड़ा उसके बाजू में बिठाया, अब क्या करते हैं श्री हस्ते करे तार अंग समार जा, सनातन गोस्वामी के शरीर में धूल लग गया था दंडवत किया था तो चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से उसको
झाड़ रहे हैं। श्री हस्ते करे प्रभु अंग समार्जन। देखिए प्रेम की अवस्था याद आता है। प्रसंग बड़ा ऊंचा है लेकिन रासलीला में वर्णन की गोपियां जब रास में थक जाती थी ना तो सुखदेव जी कहते हैं स्वयं अंगे न पाणी ना, कृष्ण अपने कर कमल से गोपियों के मुख कमल को पोंछते थे। भगवान अपने भक्तों के भक्त बन जाते हैं फिर रस कोई भी हो साक्ष्य माध्यम, क्योंकि भगवान का अपना स्वभाव है। यहां पर भी सनातन गोस्वामी को स्वयं चैतन्य महाप्रभु मार्जन कर रहे हैं, अपने श्री हस्ते करे प्रभु अंग समार्जन। और सनातन गोस्वामी ना करो मोर स्पर्शन, प्लीज प्रभु रहने दो मत करो। हम लोग होते तो वीडियो बुला के देखो लो तो फोटो लगना चाहिए, हम क्या है दुनिया को पता चले। लेकिन यहां पर हमारी बात तो नहीं करे तो अच्छा है इन प्रसंगों में, लेकिन यहां पर वो तो जल्दी बंद करो मत करो ऐसा ऐसा कर रहा है, मैं छूने लायक नहीं हूं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह बात हमें आप भक्तों के सामने रखनी, प्रभु कहे तोमा स्पर्शी पवित्र हईते। हे सनातन गोस्वामी मैं तुमको क्यों स्पर्श कर रहा हूं जानते हो, मैं अपने आप को पवित्र करना चाहता हूं, क्योंकि जो कृष्ण प्रेमा भक्ति में रहता है ना ऐसे भक्त को छूने से हम क्या होते हैं पवित्र हो जाते हैं। भक्ति बले पार तुमी ब्रह्मांड शोधिते, तुम कह रहे हो कि तुम अशुद्र शुद्र हो पवित्र नहीं हो, अरे तुम अपने भक्ति के बल पर पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो, और मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए तुम्हें छू रहा हूं, तेरी सेवा में लगा, मुझे अपने आप को शुद्ध करना है। और वही पर कविराज जी ने एक श्लोक डाला है हरि भक्ति सुदोदय का, अक्षणो फलम त्वाम दर्शनम ही, ये आंखों का फल है वैष्णव का दर्शन करना, तन्नो फलम त्वागात्र स्पर्शम, ऐसे भक्तों के शरीर को चरणों को छूना ये शरीर मिलने का फल ये है। जेवा फलम तद्गुण कीर्तनम, ये जीवा इसीलिए मिली है कि भगवान के भक्तों का यश गाया जाए, ये यश त्रिशुक त्रिभुवन अपना नहीं भक्तों का, क्योंकि भगवान भी चैतन्य महाप्रभु के विषय में कविराज जी ने लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में बैठते थे गंभीरा में या जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में या नरेंद्र सरोवर स्नान में, सब जगह आप देख सकते हो 10 मुख 100 मुख 50 मुख हैया शब्द आया है, भक्तों का गुण गाने के लिए महाप्रभु के कितने मुख हो जाते थे, 100 मुख हो जाते थे, थकते ही नहीं थे। हम लोग जैसे अपना कविता करते हुए थकते ही नहीं, महाप्रभु बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी को, और अंत में लिखा है सुदुर्लभा भागवता ही लोके, इस तीनों लोकों में सबसे दुर्लभ कोई व्यक्ति है तो वो वैष्णव है। एक इसको हिंदी में एक भक्त ने बड़ा सुंदर कहा है, तीनों लोकों में दुर्लभ कौन है, भक्त। तो बोले भगवान नहीं, बोले नहीं वो तो सब जगह है, भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र है, दुर्लभ कौन है, भगवान की भक्ति में लगाने वाला प्रभुपाद जैसे भक्त दुर्लभ है भाई, जो सब जगह भगवान को प्रकट करता फिरे जहां भी जाए वहां। हरि नाही दुर्लभ जगत में हरि जन दुर्लभ होय, इसको हिंदी में कहा है कि हरि नाही दुर्लभ हरि जन दुर्लभ होय, और हरि मिले जग देत है, और हरि किसी को मिल भी जाए ना, ध्रुव को मिल गए हरि, हरि अवतार ही नाम ही हरि अवतार है वहां, ध्रुव को मिले आप सब कथा जानते हो, क्या दिया ध्रुव को, लोक दिया राज दिया। तो ये भक्त कहते हैं हरि मिले जग देत है हरि जन मिले हरि देत, अब बताओ कौन कौन अच्छा काम कर रहा है, भगवान मिलते हैं तो संसार का राजा कुछ भी बना संसार दे दिया, लेकिन भगवान के भक्त मिल जाए तो क्या देते हैं, भगवान को देते हैं। इसीलिए कोई माने माने न माने जाने न जाने युगो युगो तक मानव समाज ऋणी रहेगा, ऐसी भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद का, जिन्होंने प्रभुपाद ने भक्त क्या दिया, जगत को कृष्ण दिया, कृष्ण का नाम दिया, कृष्ण का महाप्रसाद दिया, जहां गए वहां सबको कृष्ण कीर्तन से कृष्ण प्रसाद से, महाप्रसाद नाम नहीं सुना था उन्हें अमेरिकों ने,
कि महाप्रसाद डिक्शनरी में नहीं है उनकी, लेकिन प्रभुपाद ने स्वयं बना के खिला दिया, प्रेमी बना दिया। और ऐसे आचार्यों की, ऐसे साधुओं की कितनी भी सेवा करो ना, कम है, ऋण नहीं होकर बस इतने ही से वो खुश हो जाते हैं कि उनके बनाए हुए निर्देश आदेश शास्त्र अनुसार हम साधना करें ना, सेवा करें ना, वो खुश हो, प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ा सरल हम कर सकते हैं, पर बहुत सुंदर बातें हैं। महाप्रभु ने तो वहां कहा, जो वर्णन आया है, तोमा स्पर्शी आत्म पवित्रते, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर भी रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु जी अखबार में भर रहे हैं और प्रेम भाव आलिंगन में ले रहे हैं। कविराज जी लिखते हैं इसके आगे वाले चौक में, 24 नंबर करिए, स्तंभ स्वेद अश्रुकंप पुलक वैवर्ण्य दुहार मुखेते सुनी गदगद कृष्ण वर्ण। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, एक ही शब्द बोल रहे थे, क्या? कृष्ण। कृष्ण भी कोई राग ताल में नहीं था, गदगद कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और दोनों में रोमांच कंपा अश्रु वैवर्ण हो रहा, भाव हो रहा है। और इसी बात को हम आपको कल स्मरण करा रहे थे, भगवान का और भक्त का मिलन है। तो राम जी ने भी जब भरत जी को देखा तो वहां पर यही वर्णन आया है, और वहां पर जो लिखा है ये बात यहां पर भी समाप्त होती है। किस बात को? वहां पर लिखा लिखा गया है कि अगम अगोचर प्रेम भरत रघुवर को। ये रघुवर और भरत का प्रेम है ना, वो कैसा है? वेद भी नहीं समझ पाता है ना, ऋषि मुनि ज्ञानी समझ पाते। इसी तरह यहां पर भी जो ये रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का ये प्रेम मिलन है ना, इसको हम जीवों की बात तो क्या कहे, क्योंकि ये विशाखा और राधा रानी का मिलन, जहां कृष्ण प्रेम का समुद्र उछलने वाला है, वहां हम और आप क्या इसको हम समझ सकते हैं? हम लोग की दशा ऐसी है जैसे कोई चिड़िया समुद्र के तट पर जाए तो समुद्र में कितनी गहराई है, क्या रत्न है, कितना लीटर है, ये चिड़िया का सामर्थ्य नहीं है। ऐसी दशा है हमारी यहाँ। अगम स्नेह, अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहां न जाई मन विधि हरिहर को। जहां विदा ना ब्रना, तो ये ब्रह्मा समझ सकते हैं इस बात को, यहां पर भी ब्रह्मा, क्योंकि वो उस लेवल में ही नहीं आते हैं जहां की ये बात हो रही है। हमारे संप्रदाय के आचार्य की पहुंच नहीं है तो हम आपको तो प्रसाद खाना चाहिए, महामंत्र जपना चाहिए, बाकी ये बहुत दूर है। लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक क्या कहे, मच्छर मेरू उठा रहा है, ऐसी ही बात है। लेकिन ये सब कृपा है प्रभुपाद की, जो हमें संपद, भले हमने, मैं ये सोच रहा था जब इसको पढ़ रहा था तो चिंतन कर रहा था कि चलो भाई, कविराज को तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से, रघुनाथ दास की कृपा से, या स्वरूप स्वरूप की कृपा से ये सब लीला हृदयस्थ हुई, दर्शन किया, लिखा, हमें तो वो सौभाग्य नहीं मिला देखने का। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से ये सुनने का तो सौभाग्य मिला, उसको क्यों गवाए, ये कोई कम थोड़ी है। और ये सुनने वाला व्यक्ति एक ना एक दिन उस जगह जाएगा, जो सुनता ही नहीं है वो तो अभी चक्कर काटेगा। तो सुनने का तो मिला, और ये सुनना, आध्यात्मिक जगत की बात कहे तो वहां सुनना देखना करना ये कोई अंतर नहीं माना जाता। इस तरह समझ, कभी कभी हम लोग सिद्धांत बोलते हैं अपनी बुद्धि से झाड़ते हैं, ये है इतना इतना, इसका देश काल पात्र के अनुसार सिद्धांत शिक्षा होती है, लेकिन सबको अपनी बुद्धि से मत मापो, सबको अपने शेष से नहीं मापा जा सकता। हमें जिस स्थान पर, जिस परंपरा में, जिस आचार्यों की शैली परंपरा में हम है, उसको पाना, उसके लिए प्रथम साधन है श्रवण, सुनना, और वो भी किससे, कैसे, उन आचार्यों से, उन भक्तों से जो इसको कुछ समझे है। और वो भी हम न करें तो फिर तो कोई उपाय ही नहीं रहेगा करने का, पहुंचने का वहां। इसीलिए उदार थोड़ा बनना पड़ेगा कुछ अध्यक्षों को भी, और यही करुणा होगी वैष्णवों पर, ये करुणा होगी, अन्यथा हत्या भी बोला जा सकता है इस कि ये हत्या भी हो सकती है, हमारे ऊपर क्या करें इसको प्रेम का मिलन हुआ। कविराज महानुभाव कहते हैं, देखिए ब्राह्मण गण, जैसे वहां चंद्रशेखर आचार्य चमत्कार हो गया, यहां पर भी रामानंद के सहायक कौन थे, सब ब्राह्मण थे, तो क्या हुआ, हईल चमत्कार, ये ब्राह्मण लोग भी देख रहे हैं कि एक अपूर्व रूप तेजस्वी सन्यासी इस तरह भाव में रो रहा है, गा रहा है और चिपक रहा है, और इधर जिसको हम राजा मानते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट राज जैसा पद था, गवर्नर पूरा कर वसूली करते थे रामानंद राय, और प्रख्यात थे कि बहुत बुद्धिमान थे वो रामानंद राय, वहां पर पंडित माने जाते थे उस राज्य में, तो इतना महाधीर गंभीर पंडित और पोस्ट वाला व्यक्ति, और नीचे उतर के दंडवत मार रहा है, रो रहा है, चिपक रहा है, और इधर से दोनों समझ में नहीं आ रहा था, इन ब्राह्मणों को ये दृश्य समझ में ही नहीं आ रहा था। जैसे कल हमने वर्णन किया ना, बुझी बे रसिक ज्ञान ना बुझी बे मूड प्रेमी भक्तों का चरित्र प्रेमी ही समझ सकता है, रसिकन की बात है, रसिक बिना कोई समझ सके ना, ऐसी बात है। तो क्या लिखते कविराज जी, देखिए यहाँ पर, वैदिक ब्राह्मण सब करे न विचार, 25 नंबर, विचार कर रहे। एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग भी कभी कभी भक्तों को देखते हैं, सुनते हैं, तो विचार तो करते ही है, लेकिन ये विचार करना जो है ना, वो अपने बुद्धि का लेवल है और वो गलत हो सकता है, हो सकता है। हमें आचार्यों ने जो विचार दिया है, भगवान ने जो गीता में विचार दिया है, उसको सुनना है और करना है, अपना विचार ज्यादा इस्तेमाल करना है, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, मेरे विचार से आपको ऐसा करना चाहिए, मेरे विचार से, अरे तुम्हारा विचार किस चीज़ क्या रखता है बताओ। हमें यह कहना चाहिए, प्रभुपाद जी का यह विचार, सुखदेव जी का यह विचार है, कृष्ण गीता में यह कहते हैं, तब बात में कुछ दम है। आप यहां पर खड़े रह के कहो कल मीरा रोड बंद मेरे विचार से, क्या होगा? नरेंद्र मोदी बोले तो कुछ हो सकता है भाई, कुछ प्राइम मिनिस्टर उसके विचार में, उसकी बात में दम है कि नहीं तो केवल वाणी का, समय का, आपका और दूसरे का व्यय के अलावा और होगा क्या बताऊं। ये ब्राह्मण है, पोस्ट बड़ी ऊंची है, कुल भी ऊंचा है, और विचार करना इनका काम है, क्योंकि सत्वगुणी वस्तु का व्यक्ति का काम ही विचार करना, तो काम अपने स्वभाव से कर रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्तियों के विषय में विचार करें वो उनसे ऊंचे है। इसी का रहस्य समझिए, पहले गाइए फिर समझिए। यही तो सन्यासी तेज देखी ब्रह्म साम, मैं वापस, आप देख सकते हो और सुन भी सकते हो, मैं आप रिपीट करोगे तो बहुत समय जाता है, इसलिए मैं आज अब नहीं गवा रहा हूं, लेकिन आप देख सकते हो सुन सकते हो। शुद्र आलिंगन के न कर, कुछ ब्राह्मण समझते थे कि भले ये पोस्ट है, पंडित है, लेकिन पोस्ट मतलब शूद्र, नौकरी करना शूद्र का काम है ब्राह्मण धर्म के शास्त्र के अनुसार, तो शूद्र है, और सन्यासी क्यों इसको आलिंगन करा, पहले महाप्रभु के विषय में सोच रहे, सन्यासी को चाहिए कि उस लेवल के सन्यासी लेवल को वो आलिंगन करे, शूद्र को आलिंगन करना अपवित्र होता है व्यक्ति, सन्यासी ये विचार कर रहा है, क्योंकि सन्यासी का तेज बता रहा है कि बड़ा ऊंचा है, ब्रह्म तेज दिख रहा है, और कुछ ब्राह्मण विचार कर रहे थे, यही महाराज, इसके आगे वाला, यही महाराज महापंडित गंभीर, अरे ये महापंडित गंभीर व्यक्ति सन्यासी रह, और ये सन्या एक साधु को स्पर्श मत तो ही, उसको स्पर्श करके इस तरह पागल हो रहा है। कुछ लोग रामानंद राय का गलती देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कुछ लोग इसका, और गलती भी नहीं, लेकिन सोच रहे कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब बोल दिया कविराज जी ने, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय ने भी देखा कि हमें सब देख रहे, कभी कभी हम कोई भजन गाते हैं, कोई दर्शन करते हैं, प्रवचन करते, सेवा करते, तो कभी कभी स्थान के प्रभाव से, भक्तों के प्रभाव से शुद्ध भाव आ जाता है और हम भान भूल जाते हैं, लेकिन फिर 2-5 मिनट बाद आते हैं ना कि अरे मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं। ऐसे ही जब देखा तब महाप्रभु के विषय में कविराज जी ने लिखा, इसको आप गाइए, यही मत विप्रगण भावे मने मने, यही मत विप्रगण
जातीय लोक देखी प्रभु है लसंवराणे
चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि विजातीय शिल प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि ये लोग विजातीय क्यों बोल रहे हैं मतलब भक्त नहीं है विजात मतलब दूसरी जाति मतलब योगी है कर्मी है ज्ञानी है लेकिन प्रेमी ये तो प्रेम है ना महाप्रभु ये दोनों प्रेमी है और जो देख रहे हैं वो सब क्या है प्रेमी नहीं है भक्त नहीं है इसलिए ये ज्ञानी पंडित ये जो है सब योगी कर्मी ध्यानी ज्ञानी वो प्रेमियों के व्यवहार को समझ नहीं पाएंगे और इसलिए प्रेमी भक्त को भी चाहिए कि इनके सामने ये प्रदर्शन इसलिए प्रभु हैल संवरण अपने आप को संभाला रामानंद राय को भी छोड़ दिया बोले ये सब यहाँ रहा नहीं गया ओके लेकिन फिर उसने संभाल लिया कि ये यहाँ दिखाना नहीं लेकिन इसमें हमारे लिए हम तो प्रेमी भक्त बनना चाहते हैं ना हमें उस ब्राह्मण कोटि में नहीं रहना है ज्ञानी ध्यानी पंडित विषय हमें तो इस परंपरा में आना है प्रेमी भक्त तो हमें वो भले न समझ सके इस प्रेम व्यवहार को लेकिन हमें तो समझना है इसको क्या समझना चाहिए ये हमारे आचार्यों ने बताया है प्रभुपाद ने बताया है चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर ने बताया है इसी ग्रंथ में चैतन्य चरितामृत में कविराज जी ने बताया है अन्य स्थानों पर और भागवत तो है ही है प्रमाण अमलम सारे सिद्धांतों के विषय में और इससे हम कुछ आपको कोटेशन देना चाहते हैं पहली बात ये लोग सोच रहे हैं कि रामानंद राय शूद्र है कुछ ब्राह्मण हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी भगवान की भक्ति में आ जाता है भक्त बन जाता है तब उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय जातिवाद करना नहीं चाहिए ये हम लोगों के लिए शिक्षा क्यों क्योंकि जब भगवान का भक्त हो जाता है तो वो वैष्णवेर जाति बुद्धि सनार्की पद्म पुराण वैष्णव में जो जाति बुद्धि करेगा वो सीधा बिना रोक टोक के कंफर्म रिजर्वेशन नरक जाएगा इसलिए वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं करना चाहिए तो फिर कहो भाई वो निम्न अधम कुल में जन्मा है तो क्या हो गया वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं अधम कुल ते यदि विष्णु भक्त है अधम कुल में भी हो लेकिन वो विष्णु भक्त है तथापि उत्तम हय सर्व शास्त्र कय अधम कुल में भी हो असुर कुल में भी हो लेकिन वो कृष्ण का विष्णु का भक्त है तो सब शास्त्र कहते हैं कि वो सर्वोत्तम है और इस बात को महाजनों में जिनका नाम है ऐसे प्रेमी प्रहलाद ने अपनी स्तुति में कहा है विप्रात द्विशत गुण युता अरविंद नाभा विप्र हो ब्राह्मण कुल में हो और ब्राह्मणों के 12 गुण है सत्यम तया सोचम और गीता में जो कुछ 8-10 गिनाए गए ब्रह्म कर्म जो वो सब गुणों से वो अलंकृत हो विप्रात द्विशत गुण युता लेकिन अरविंद नाभा जिनकी नाभि में कमल निकलता है पमो पंकज नाभा या कुंती कहती है जिसकी नाभि कमल जैसी है श्री कृष्ण पादारविंद विमुखा लेकिन उस कमल नयन कमल नाभि श्री कृष्ण के चरण कमल से विमुख है ब्राह्मण और ब्राह्मण के गुणों से सत्यम दया तप सब युक्त है लेकिन कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति से दूर है तब स्वपचम वरिष्ठम उससे अच्छा स्व मतलब कुत्ता और वो खाने वाला मतलब कुत्ता खाने वाले के खानदान में भी कोई जन्म लिया है लेकिन कृष्ण का भक्त है और ये ब्राह्मण कुल में है लेकिन भक्त नहीं है और वो कुत्ते खाने वाले कुल में है लेकिन भक्त है तो दोनों में अंतर क्या है तो प्रहलाद उत्तर चरण में किसी भी श्लोक का उत्तर चरण महत्व का होता है मतलब पीछे का लाइन वो महत्व का होता है वो ज्यादा पालन करने वाली बात होती है मन्ये तद मनो वचनम हितार्थे प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरि मान आप पढ़ सकते हो भागवत 7वां स्कंद 9वां अध्याय प्रहलाद महाराज की स्तुति 9वां श्लोक 8-9 श्लोक तो देखिए प्रहलाद स्तुति का 3रा श्लोक वो कहते हैं कि अगर वो स्वपज कुल में भी भले हो लेकिन कृष्ण के नाम का जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वचन से भक्त है। जप करना ही वचन से भक्त है। काया से जन्माष्टमी आ रहा है, राधाष्टमी आ रहा है, ब्रह्म उत्सव आ रहा है, सेवा करेगा मनोवचन हिता, और मन से भी जो सेवा कर रहे हैं उसके प्रति भी आदर, और मन में भी इच्छा करेगा कि मुझे कब अवसर मिलेगा कि मेरा तन भी गिरधारी की सेवा में लगे, मेरा धन भी ये पापी शरीर में लगता है, होटलों में जाता है, विषय भोग में लगता है, मेरा धन कब गिरधारी की सेवा में लगेगा। ऐसा कभी विचार, ये मन से, ये मन से प्रणाम, ये मानसिक प्रणाम माना जाता है। मनसो वच हितार से तो पुनाति कुलम, ऐसा भक्त वो तो पवित्र हो जाएगा, इतना ही नहीं पूरे कुल को पवित्र कर देगा, और वो ब्राह्मण होते हुए भी अपने आप को पवित्र नहीं कर पाएगा, कुल की बात छोड़िए। ये कौन कहता है? भागवत प्रमाण अवलम। और इसी बात को वृंदावन दास ठाकुर क्या बढ़िया बोलते हैं, ये तो भागवत का तो थोड़ा हार्ड लगता है ना हमको संस्कृत, लेकिन बंगला देखिए, वो कहते हैं उत्तम कुलेते जन्म कृष्ण ना भजे। उत्तम कुल में जन्म हो गया लेकिन कृष्ण का भजन नहीं किया, कुल तारे की करीब नर के ते मजे। अरे कुल क्या करेगा, यमराज ये थोड़ी पूछेगा बेटा कहां से आया, ब्राह्मण कुल से, अच्छा दो और लगाओ इसको, क्योंकि ब्राह्मण कुल में तो भजन करना चाहिए, नहीं किया और मारो क्योंकि इसको ज्यादा ड्यूटी था। उत्तम कुल की करीबो, क्या करेगा उत्तम कुल, उत्तम कुल में होते भी नरक जाना पड़ेगा। बोला नहीं मुख से भगवान नाम तो कोई उद्धार होने वाला, इसको गाया वृंद हमारे नरोत्तम दास ठाकुर, नीताई ना बोली लो मुखे मजिलो संसार सुखे, विद्या कुले की करी बेतार, विद्या कुले की करी बेतार। अरे तुम कृष्ण नाम संकीर्तन नहीं किया तो तुम ऊंचे कुल में जन्म लिया, सीए पीए बीए कुछ भी बन गया, की करीब है क्या होगा, कोई फायदा नहीं। भजन का बल है ना, भक्ति का महत्व है, इसीलिए हरि भक्ति सुदोदय या हरि भक्ति विलास आदि ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने क्लियर किया है, मत भक्त स्वपचम प्रियम, स्वपच लेकिन मेरा भक्त, नमे भक्त चतुर्वेदी, भले चतुर्वेदी हो, आजकल तो सरनेम होता है चतुर्वेदी, वेद क्या है वही पता नहीं उसको, लेकिन पूछते तो त्रिवेदी चतुर्वेदी सब हो जाता है, लेकिन हम हमारा भाग्य है कि भारत वो भूमि है कि आज भी ब्राह्मणों से अलंकृत है, क्योंकि आज भी वहां ऐसे ब्राह्मण पड़े हैं जो ब्राह्मण कुल का गौरव बढ़ाते हैं, जिनके वाणी में वेद होता है और का जिनका जीवन समर्पण होता है भक्तों के, और ऐसे ब्राह्मणों को हमारे शास्त्रों में पृथ्वी के देव बोला है, भू देव, और उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इसको प्रणाम तो हमारे द्वारकाधीश कृष्ण भी करते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय। तो ब्राह्मण को देख के प्रणाम करना, आदर करना, ये तो हमारा धर्म कर्तव्य है, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है। प्रभुपाद जी ने कर्म से ब्राह्मण बनाने के लिए संस्था बनाई है कि ब्राह्मणों का जो शौच होता है, जो पवित्रता होता है, जो धर्म होता है, जो वेदाध्ययन होता है, ऐसा कार्य यहां सिखाया जाता है। जन्म से भले ब्राह्मण न हो लेकिन कर्म से ब्राह्मण, और ये चतुर्वर्ण्य माया सिस्टम है ना, वो गुण कर्म से ऊपर विभाजित मानी गई है, जन्म के ऊपर इतना नहीं, लेकिन जन्म का अभिमान करते हैं और केवल सबका निंदा करते हैं और भजन नहीं करते, व्यसन और पाप करते हैं, ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होगा, याद रखना चाहिए, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में आया है, धने जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाए, भक्ति वशहय प्रभु चारी वेद गाए, भक्ति है। और उदाहरण भी दिया, शबरी कौन ऊंचे कुल की थी, वंशम को विदुरस्य च, पद्यावली रूप गोस्वामी श्लोक लिखते हैं, भक्ति प्रिय माधव, भगवान को तो भक्ति प्रिय है, किस कुल में जन्म है उससे क्या मतलब। और ऐसे भी आप तत्व से विचार करो ना, तो आत्मा कोई जाति नहीं, क्योंकि आत्मा न तो ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, आत्मा कृष्ण का दास है,
ये हमारी मूल पहचान। इसी को नारद जी ने कहा सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये हूं, ये उपाधि त्यागो। उपाधि मतलब क्या जानते हैं? ऊपर से लिया हुआ टेंशन, जो है नहीं वो मान रहे हैं। हिंदी में इसकी व्याख्या बड़ी अच्छी है कि जो है नहीं उसको पकड़ के दौड़ रहा है। मैं ये हूं, मैं वो हूं। हम कृष्ण से दासो हम कौशलेंद्रस्य, हनुमान जी ने कहा वाल्मीकि रामायण में, ये हमारा स्वरूप है, इसमें हमें रहना है, इसमें सिद्ध होना है। शूद्र के विषय में हमारा वेद कहता है सर्व वर्णेषु ते शूद्र ये न भक्ति जनार्दने। शूद्र कौन है जानते हैं? भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है वो, सीधा डेफिनेशन बताओ, इससे सरल क्या हो सकता है? आप अपने आप को कुछ भी मानो, क्षत्रिय पंडित ब्राह्मण, लेकिन वेद कहता है कि जनार्दने जस्य भक्ति न एव स एव शूद्र, वो शूद्र है। बाकी जो भक्त होना है, भगवान का भजन करता है ना, भगवान के हृदय में रहता है, और भगवान वैकुंठ छोड़ के स्वांतस्थे न गदाप्रीता तोमार हृदय गोविंद विश्राम। भगवान वैकुंठ छोड़ के भक्त के हृदय में रहते हैं, और ऐसे भक्त को आप शूद्र कहते हो। इसलिए शास्त्रों के सार को हमें समझना है तो गौड़ी आचार्यों की शरण लेनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं बोला स्वरूप दामोदर ने, वो पुरी में आया हुआ ब्राह्मण जो जगन्नाथ के विषय में कविता कर दिया और उसका निराकरण समाधान करते स्वरूप दामोदर ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। चैतन्य रस संगी गुण नित्य कर संग तभी तो जानिबे तुम्हें सिद्धांत अतरंग। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आने वाले भक्तों का सत्संग करो तभी तुम्हें भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, उस तत्व को आप समझ पाओगे, उस सिद्धांत को। बाकी तो गान बजान मनोरंजन तो सब जगह होता ही है, टाइम पास खुश करो। कैसा प्रवचन? मजा आया, मजा आया कि नरक में यमराज मजा लेगा? बराबर मजा देता हूं तुझे। सबको सब कीर्तन में झूम रहा था, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, इधर ये बाबा इधर वो बापू, सब चलता है इधर आ। ये उदारता नहीं, ये मूर्खता है। जय जन कृष्ण भजे सही चतुर, बात तो यही है, सीधी सिंपल सार बात, और उसको भगवान भी मानते हैं। तो ये ब्राह्मण लोग जो भी माता बच्ची कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारा दिमाग से ये निकालना है कि कोई भी है भक्त है तो वो प्रणम्य है, उसके अंदर भी भगवान है, और वो सेवा में है तब तो कहना ही क्या, हमें उनके प्रति दास दासानुभाव में रहना। हाँ, गुरु स्थानीय होते हुए कुछ शिक्षा उसकी प्रगति के लिए हम दे सकते हैं, लेकिन हमारा भाव जो है ना, किंतु प्रभोरिय प्रिय एव तस्य, यही होना चाहिए। ये हमारे आचार्यों ने सिखाया, और इन दोनों में तो प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु में रुक ही नहीं पाए, अभी महाप्रभु रुक गए, दिखाना नहीं है, लेकिन प्रेम ऐसी वस्तु है ना, वो जब प्रकट होता है ना, कितना ही रोको रुकता नहीं है, क्या करे, संभलती नहीं दिशा। ये आचार्य दिखाना चाहते नहीं लेकिन संभाल नहीं पाते, करे क्या, और फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं, जो महाप्रभु और रामानंद राय ने किया। हमारे हिंदी भक्तों ने कहा है, प्रेम छुपाया ना छुपे जागट प्रगट होए। असली प्रेम होगा ना शुद्ध, वो तो प्रगट हो ही जाएगा, छुपाने का भी ट्राई करो छुपेगा नहीं। मुंह से कछु ना बोलत है पर नैन देत है रोय। अगर हृदय प्रेमी है तो भले वो मुंह से ना बोले लेकिन नैन बोल देते हैं, वो रोने लग ही जाते हैं। जब हमारी आंखें आंसुओं का दरबार भरती है ना, तो समझ लेना चाहिए कि दिल में किसी प्रेमी का अभिषेक हो रहा है, जिसे हम प्रेम करते हैं और हमें याद आ गया, तब फिर वो अभिषेक का जल, आप भगवान को अभिषेक करते हो तो निकलता ही है ना वो पंचामृत बाहर। जैसे दिल में किसी प्रेमी का जब याद का अभिषेक होता है ना, तब आंखें आंसुओं का दरबार भर ही लेती है, वो रोके रुकती नहीं है, लेकिन सही होना चाहिए प्रदर्शन नहीं। यहां सही हो रहा था दोनों के बीच में, बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब गौर बोले, चैतन्य महाप्रभु बोलने जा रहे हैं, एक स्थान में बैठे शांति से दोनों, और महाप्रभु ने कहा सार्वभौम भट्टाचार्य, 30 नंबर श्लोक,
चलो इसको भी गाते हैं, बजाइए, थोड़ा रस भी ले लेते हैं अलग टोन में। बंगला है उसको हम ब्रज भाषा, मारवाड़ी, हिंदी, गुजराती, राग तो अपने 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 होते हैं ना। गुजराती राग अपना होता है, ब्रज राग अपना होता है, भोजपुरी राग अपना होता है, तो हम तो है ही है गुजराती, तो थोड़ा स्वभाव दोष तो आपको सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति कितना ही करे स्वभाव जाता है।
सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तो मार गुणे, तुमारे मिलते मोर करीलायतने,
आगे बढ़ो
ने तुमा मिली बारे मोर इथा आगमन,
गरुड़ जब प्रभु जी हंस रहे हैं ऐसे हमारे गिरधारी भक्त में गरुड़ जब प्रभु ऐसे उनको देख के आप हंसना ही आएगा। आप कोई भी परिस्थिति स्थिति विपरीत हो अनुकूल हो हंसते ही रहते ऐसे भक्त सिंगार है। ये जो मुस्कुराहट है ना, भगवान की दी हुई मुस्कुराना भगवान का दिया हुआ अनमोल फ्री गिफ्ट है। एक तो अनमोल है और कैसे दिया है भगवान ने, फ्री में, कोई खर्चा होता है। लेकिन फिर भी लोग है कि हंसते नहीं, बस जब देखो तब उग्रम विग्रम महाविष्णु के उपासक हो जाते हैं। ये मुस्कुरा, ये प्रसन्नता है ना, सारे सद्गुणों की मां है। जितने भी क्वालिटी है ना, इसकी मां कौन है जानते, प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम, ये उपनिषद के सूत्र है। चित्त प्रसन्न होना चाहिए पहले, तो पहले से ही चिंता में क्या होगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा सीधा, ये पहले से ही तुम गड़बड़ लेके कथा में आ रहे हो और बोलते हुए भी बस अपनी बुद्धि का ऐसा लगा हाँ है। प्रसन्नता नाम का आइटम ही लगता है कि सर्किट भूल गए भगवान, डाउन क्या बोलते, डाउनलोड ही नहीं हुआ ये सॉफ्टवेयर। ऐसे भक्तों का उद्धार नहीं हो सकता, समझे। किसी भी बात को पहले तो स्वीकारने के फेर में पॉजिटिव, हम लोग कहते हैं ना बी पॉजिटिव, पहले तो ये बनो, भले आपका ब्लड नेगेटिव हो लेकिन स्वभाव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। गुण देखो, अगर सही में भक्त मानते हो दूसरे को, भगवान देखते हो उसमें, और स्नेह और सेवा है, तो उसका प्रमाण है कि उसके दोष में भी गुण दिखेगा। ये प्रेमियों का आप सुनो तो सही प्रेमी चरित्र, तब आपको पता चलता है कि क्या वास्तविकता है। और कहीं दोष मिल जाए ना, उसको छुपाता है और उसको दूर करने का प्लान करता है, ना कि पेपर में देता है, इधर आओ प्रभु जी पता है। ये कौन सा भक्ति है भाई। अरे दोष किसमें नहीं है, भागवत जी में आया है एक विष्णु, एक ही पुरुष है जिसमें कोई दोष नहीं है, और वो है श्री विष्णु राधा गिरधारी। बाकी तो सब में छोटे बड़े, आज नहीं तो कल, ऋषि मुनि देवता कोई छोड़, बिना दोष का कोई मिलेगा नहीं भाई। हमारा काम है दोष दूर करना, अपना और दूसरों का भी, तो अच्छा है। ये हमारे गुजराती राग में हमने गाया, इसलिए थोड़ा हास्य गुजराती भक्तों के मुख कमल में झलकता है, लेकिन सरल है, समझ में आनी चाहिए बात। क्या कह रहे महाप्रभु, सार्वभौमे भट्टाचार्य कहिला अमार। मैं जब निकला ना पुरी से तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे बोला था, क्या बोला था, तुम्हार मिली थे कि आप रामानंद राय को जरूर मिलना। और अब महाप्रभु कह रहे तुम्हार मिली बारे मोर यथा आगमन। वास्तविक बात बोलो, मैं यहां आया हूं ना प्रसाद लेने के लिए, नहीं तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे मुख से कुछ सुनने के। तुम्हार मिली बारे मोर इथा आगमन, यहां आना मतलब मेरा उद्देश्य था कि मैं आपसे मिलूं। और भाल हैल, आज बहुत बड़ा अच्छा कृपा हो गया ना कि अनायास पाइलू दर्शन, मैंने आपका दर्शन पाया अचानक, अनायास मतलब सरलता से, इजीली कृष्ण कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से, अनायास के स्थान परिस्थिति में सब अर्थ होते हैं। मैंने आपका दर्शन पा लिया, ये मेरा सौभाग्य है, बहुत अच्छी बात है कि आप मिल गए, क्योंकि मैं आपको मिलने तो यहां आया था। अब महाप्रभु पूरी से चले तब सार्वभौम ने कहा था, ऐसा महाप्रभु बोल रहे हैं। ओके, तो हमें ये देख लेना चाहिए भक्तों को कि जब महाप्रभु चले पुरी से तब सार्वभौम वास्तव में क्या बोले थे। एक झलक वहां जाते हैं। पुरी आना है आप सबको फ्री में, क्योंकि आप पुरी तो नीचे खाते ही हो गिरधारी का, लेकिन जगन्नाथ पुरी से महाप्रभु जब चले, अभी तो हम गोदावरी के तट पर है कथा में, लेकिन जब वहां से चले तब क्या हुआ था मालूम है। रामानंद राय आछे गोदावरी तीरे, आप अगर गोदावरी के तट पे जाओ ना तो वहां रामानंद राय नाम के एक व्यक्ति मिलेंगे। अधिकारी होए न ते हो, वो एक ऐसे अधिकारी ऐसे पात्र है, चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं। आप पूछ सकते हो सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है भाई। सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय राजा प्रताप रुद्र के शासन में, आज से 500 वर्ष लगभग पूर्व ये कथा जो है, वो ओडिशा के, वो भी जगन्नाथ मंदिर के खजांची थे, बड़ी ऊंची पोस्ट थी, एक पोस्ट के नाते बड़े ऊंचे थे, राजा के मेन थे, राजा इनको पूछ के काम करता था। ओडिशा का राजा ये जो सलाह देते थे उस अनुसार चलते थे प्रताप रुद्र सार्वभौम। दूसरी बात, वो जितने भी शंकर अद्वैतवादी थे ना उनके गुरु थे। एक तो पोस्ट की बात छोड़ दीजिए हायर, अब ज्ञान की बात करें तो ज्ञान में भी महाप्रभु स्वयं तो उनसे सुनने, आप उस समय से ही सुनिए, बड़े बड़े सन्यासी लोग, बड़े बड़े पंडित लोग उनसे सुनते थे, क्योंकि वेदांत में प्रखर थे। और अब तत्व से बात करें तो गौर गणोदेश देवी के अनुसार वो साक्षात बृहस्पति क्या होता है, देवताओं के गुरु जो बृहस्पति है ना उसके वो। अब ये सार्वभौम कह रहे हैं कि आपको मिलने लायक कोई पात्र है ना तो वो रामानंद राय है, महाप्रभु पुरी में। और फिर कहते हैं शूद्र विषय ज्ञाने उपेक्षा न करीबो। देखिए गौरांग राय वो शूद्र है, मतलब वो तो सेवा में नौकरी में लगा है, ऐसा समझ के उसकी उपेक्षा मत करिएगा। आमार वचन तार अवश्य मिलेबे, आप मुझे मानते हो ना, क्योंकि उनको तो गुरु मंत्र प्रवचन सुनते थे उनका पहले, और ऐसे भी जानते हैं अगर आप मेरे पर भरोसा करते हो, आमार वचन मेरी बात थोड़ी भी मानते हो, तो उसको आप शूद्र समझ के या नौकरी कर रहा है या राजा का नौकर है ऐसा समझ के नजरअंदाज मत करना। मेरा वचन है, मेरी वचन मतलब मेरी आज्ञा ही समझिए, या आप मेरी इच्छा समझते हो तो आप उनसे जरूर मिलिए। मानो महाप्रभु पूछे भाई ऐसा क्या है रामानंद राय में, क्या आप इतना स्पेशल निवेदन कर रहे हो। तब वहां पर रामानंद राय के विषय में सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या बोला, सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला तुम्हार संगे योग्य ते हो एक जान, आपके लेवल का आपकी संगति कर सके या आपको जिससे सत्संग करना चाहिए उस टाइप का कोई व्यक्ति है आज पूरे ब्रह्मांड में, ते हो एक जान, वही एक है जो आप आपके स्तर का। और फिर कहते पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तारस, आज पूरे पृथ्वी में रसिक भक्त उसके समान दूसरा कोई नहीं, वन मैन शो, रामानंद राय इज अ वन मैन इन होल यूनिवर्स, नहीं ऑन द, ऐसा नहीं कि एक जगह की बात हो रही है, पृथ्वी ते नाचे पूरी त्रिलोक पृथ्वी में उनके समान रसिक भक्त कोई नहीं है। पंडितार भक्ति रसे दुहेर तार सीमा, एक तो पंडिताई
शास्त्र वेद अध्ययन की शास्त्र में जो विद्वत्ता है गरिमा में है, और साथ में रस, रस के उच्च शिखर में भी वो विराजमान है। देखो कोई व्यक्ति होता है ना, जैसे हमारा हिमालय है भारत में ऊंचा है, हमारा समुद्र है भारत में प्रकृति में बहुत गहरा है, लेकिन समुद्र में गहराई है ऊंचाई नहीं है, हिमालय में ऊंचाई है लेकिन गहराई नहीं है। लेकिन रामानंद राय जैसे भक्त ऐसे है, ऊंचे भी इतने ही है और गहरे भी उतने ही है। जिनकी वाणी में वेद का वैभव है और उसके स्वर में कोकिल की मधुरता है, ये वक्ता के बहुत बड़े गुणों की बात हो रही है। कभी कभी होता है ना, ज्ञान होता है लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं होता, कभी गाता है सब फालतू गाता है, पता नहीं कौन सा रस प्रसाभास वाला क्या क्या, लेकिन ये तो पूर्ण है सब तरह से। संभाषित जानी लो तुम्हें, और ये मेरे कहने से आप मत सोचिए, आप जब उनसे बात करेंगे ना तब आप ये जान ही लेंगे। मेरा इतना ही निवेदन है कि आप जरा उससे मिल लीजिए बस, बाकी वो क्या है वो आप खुद ही समझ जाएंगे। अब इस तरह वहां पर रामानंद राय ने बोला था कि वो रसिक भक्त है। रसिक भक्त को कविराज महानुभाव ने कोयल बोला है, चैतन्य चरितमानस ने क्या बोला है, कोयल। कोयल जानते ना कुकू, वो जो गाने में बड़ा सुंदर राग होता है उसका, और वो कोकिल क्या खाती है मालूम है, आम्रेर पल्लव, ये जो आम की सीजन में जो नया नया आम के झाड़ पे वृक्ष पे जो छोटे छोटे कोमल पत्ते लगते हैं ना, उसको चोंच मारती है। तो कविराज जी कहते ये सब सिद्धांत अमृत पल्लव, ये जो भक्ति रस के सिद्धांत है ना वो अमृत का पल्लव है, और उसके लिए भक्त जन, ये जो वैष्णव है भक्त है कोकिल सर्वदा वल्लभ, और ये भक्त रूपी कोयल उसको खाती है, और भक्त रो ऊंट यहां ना प्रवेश। और कविराज कहते हैं कि जो अभक्त रूपी जो ये केमल है ना ऊंट लोग, उनका तो इसमें प्रवेश होगा नहीं, अभक्त रो ऊंटे यहां ना प्रवेश, तबे चित है मोर आनंद विशेष। और ये हमारे लिए आनंद की बात है कि ऊंट लोग को पता भी न चले ये सारी बातें, ये अच्छा ही है। भक्तों श्रीमद भागवत महात्मा स्कंद पुराण में सुखदेव जी ने, व्यास जी ने प्रवर अवर श्रोताओं की बात कही है। प्रवर शब्द न शुक मीन हंस इनका वर्णन आया है, और जब अवर श्रोता की बात करते तो अवर तो कहते बुरुक बुरुक वराग उष्ट प्रकृतिता। ये ऊंट जानते, ऊंट तो सब जानते भाई, बड़ा ऊंचा होता है गर्दन भी, और उसका रंग रूप उसके होठ बड़े अच्छे होते हैं ऊंट के, आप सभी देखे होंगे। तो यहां पर जो जो रस वेता नहीं है विवाद वाला है, ऊंट की महिमा उपमा उसको दी है। ऊंट का क्या गुण, तो फिर वहां पर ऊंट श्रोता का डेफिनेशन तो दिया कि अवर है, मतलब संज्ञा दिया, लेकिन ऊंट का डेफिनेशन मतलब ऊंट किसे कहते हैं, तो वहां कहते हैं ऊंट मधुरो मुंचन। ऊंट क्या कहता है, करता है जो मधुर वस्तु होता है ना उसको नहीं नहीं खाता, और जो करीली कंटीली झाड़ियां होती है ना बबूल या रेगिस्तान में वो कंटीला वृक्ष, उसको वो चबाता है। तो उष्ट मधुरो मुंचन विपरीत रमते स, ये ऊंट जैसे श्रोता उसको कहते हैं जो रस की भक्ति की सिद्धांतिक बात होती है वो उसको पसंद नहीं आती, और उसको क्या पसंद आता है, बस ये जो आज की बातों में कहा जाए विषय भोग की वार्ता, मनोरंजन या मायावाद, या फिर सब सब देवी देवा एक है, ये जो सब है कचरा पट्टी, उसमें वो रमते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। और वेदों से वास्तविक तत्व सिद्धांत साथ में रस कोई बोले उसको नहीं, उसकी नहीं ना करना। तो उष्टम विपरीत ऑलवेज उल्टा चलता है, तो वो नीम के वृक्षों को जो भी कड़वा है कंटीला है वही उसको भाता है, और जो मधुर है आम है उसके उसको कोई नाता नहीं, ऐसे लोगों का इसमें प्रवेश होगा नहीं। हमें क्या बनना है, हमारे ऊपर है, चैतन्य चरितामृत एक रस ग्रंथ है, तत्व सिद्धांत तो उतना ही है, लेकिन महाप्रभु ने युग धर्म प्रचार तो किया ही किया, लेकिन बहिरंग कारण है। अनुसिंगिक कहले त्रिभुवन धन्य,
निज गुढ़ कार्य तुम्हार प्रेम आस्वादन। और ये जो लीला है ना चैतन्य चरितामृत में है, तो ये माधुर्य से रस से भी मंडित ग्रंथ है। लेकिन माधुर्य रस की मीनार जो है ना वो तत्पर्वत खड़ी होती है, उसकी भूमि तत्व है, इसलिए इसकी चर्चा है। लेकिन इसी तत्व में आप आगे जाएंगे तो वो रस में ही बात आके आएगी, सीधी वही अटकेगी। इसलिए भक्तों हमारा निवेदन है कि हमें सब शिक्षाएं लेती चलने की, कैसे श्रोता बनना है, क्या सार है, क्या राइट है, क्या वास्तविकता है, क्या गलत है, इन सारे प्रसंगों के अंतर्गत। और सबसे अच्छा लाभ ये हो रहा है इस कथा में कि हमें सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, रायन रामानंद, ऐसे शुद्ध मंजरिया है, राधा रानी है, कृष्ण है, तत्व से इनका नाम हम ले रहे हैं, उनका चरित्र सुन रहे हैं, और इन दोनों इनके चरित्र से हमें कुछ भक्ति की प्रेरणा मिल रही है। और ऐसा आयोजन जो हो रहा है ये हमारे राधा गिरधारी मंदिर के भक्तों के लिए एक महा उपादान है, एक महा महा उपादेय कार्य है। और इस कार्य का संकल्प जिस भक्तों के मन में उठा है ना, ये भक्त लोग का भी बड़ा ऋण है, हमारे ऊपर भी और भक्तों के ऊपर भी। द्वारकानाथ प्रभु का बहुत भाव था गरुड़ प्रभु का, आप करो करो, मैं बोला नहीं होना चाहिए, मैं पहले सोचा गीता बोलता हूँ कुछ, क्योंकि गीता के साधारण सिद्धांतों से, बोले सिद्धांत ही बोलना है तो गरुड़ प्रभु कहे कि चंद को भी प्रभु ने बोला है कि राय रामानंद संवाद बोलो, गीता ही है उसमें, शिष्य भागवत भी है, क्या नहीं है। जैसे लिखा गया यस्मिन भारते, जो महाभारत में है, महाभारत में जो पूरे विश्व जितने भी ग्रंथ है, वैसा क्या नहीं है जो महाभारत में नहीं है। और भारत न तो कहीं भी नहीं है, जो महाभारत में नहीं है तो ऐसे ही संवाद ऐसा है कि जो राय रामानंद में नहीं है तो कहीं नहीं है, और ऐसा क्या नहीं है कि जो इसमें नहीं है, सब है। तो फिर हमने सोचा कि चलो साहस, भक्तों के बल पर साहस कर ही लेते हैं, त्रुटि होगी तो आप सब भक्त ही हो, क्षमा करते ही रहोगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि एज इट इज बात को रखा जाए। अपने अपने बुद्धि के स्तर पे हम कुछ चूक भी जाए, आप अपने दिमाग से सही ले लो, एज इट इज बात रखी जाए, उसमें कोई दोष नहीं है। तोता का पठन होता है, तोता भले अर्थ भावना समझे, वो गा लिया बस। अब आप अपनी बुद्धि से इसका आस्वादन करो, अन्य भक्तों से चर्चा करो, आगे बढ़ो, लेकिन ऊंट वाला काम मत करो। ऊंट वाला काम हमें नहीं करना है, भले हम कोयल न बन सके लेकिन ऊंट तो नहीं ही बनना है, नेगेटिव में क्यों चले, इतना तो हम कर सकते हैं। आगे कहते हैं, ये तो बोल दिया गौरांग जी ने, अब रामानंद राय कहते हैं। रामानंद राय के शब्द बड़े सुंदर है, करिए आगे 33 नंबर श्लोक। रामानंद राय कहते हैं,
तार कृपार पाइनो तुमार दर्शन, तुमार दर्शन।
कितनी सुंदर लाइन है, आप देखिए, आज सफल होइल मोर मनुष्य जन्म, मैं कुछ भक्तों के चरणों में पुनः क्षमा मांगना चाहता हूँ। कुछ भक्तों का भाव होगा कि क्या टाइम पास कर, जल्दी से जल्दी प्यार बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, लेकिन एक एक प्यार शब्द इतने रस भरे, शिक्षा भरे, और शिक्षा रस भी साइड में छोड़ो, सुनने में ही सुख देने वाले हैं। श्रवण मात्र न सुख प्रदाती, केवल श्रवण करने में सुख देने वाले शब्द है। रामानंद राय कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, आज मैंने आपका दर्शन पाया ना, मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। मीरा रोड में इस्कॉन गिरधारी मंदिर खोल के प्रभुपाद और प्रभुपाद के भक्तों ने कई आजू बाजू के मनुष्यों का जीवन सफल कर दिया, क्योंकि यहां आके किसका दर्शन मिलता है, भगवान का। और भक्त का दर्शन करना इसी में मानव जीवन की सफलता है। अक्षणो फलम त्वाम दर्शनम ही, जैसे हमने श्लोक किया था ऐसा ही श्लोक वेणु गीत में गोपियों ने गाया है, अक्षणवता फलमिदम न परम विदाम। राधा रानी कहती है वेणु गीत का प्रथम श्लोक कि हे सखी, ये जो आंखें मिली है ना, इसका सौभाग्य और सार्थकता यह है कि नंद नंदन को देख लिया जाए, न परम विदाम, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और इसी श्लोक का जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में आस्वादन करते इसी रामानंद राय के साथ, तब तो महाप्रभु जी बोल दिए राधा भाव में है ना, तब तो बड़ी ऊंची बात, तब विशाखा जी के भाव में, तब तो कहती है सखी जो कृष्ण का दर्शन जो सखी नहीं करती ना उसकी आंखें बेकार है।
तार नयन रबे की कार,
उसकी आंख फूट जाए किसकी,
जो ना देखे ये चांदवद।
पूनम के चांद जैसा कृष्ण का ये मुखड़ा जो है वो जो अपनी आंखों से नहीं देखता है उसके नयन रबे की कारण, उसकी आंख हो या न हो रहने से क्या फायदा।
तार शिरे पड़ू वाज,
उसके सर पर तो बिजली गिर जाए, कितनी क्रोध में बोल रही है कि जो गिरधारी का दर्शन नहीं करता उसके सर पर क्या गिरे, बिजली गिरे।
तार शिरे पड़ू बाज,
बाज मतलब बिजली, क्योंकि कृष्ण का जो मुखड़ा है लावण्य से मंडित है, नेत्रों का फल तो यही है कृष्ण का दर्शन हो जाए। और आज राधा कृष्ण मिलित श्री गौरांग का ये जो मुखड़ा देखने मिला है, रामानंद राय कहते सफल है लो मनुष्य जन्म, और मैं हृदय से अनुभव कर रहा हूं कि ये कथा सुनने मिल रही है ना हमारा भी जन्म सफल हो रहा है, श्रवण तो हो रहा है इन पवित्र शब्दों का, इन पवित्र प्रसंगों का, ये भी कोई कम बात थोड़ी है। क्योंकि भक्त का दर्शन, भगवान का दर्शन, जीवन सफल है। और ये बात स्वयं महाप्रभु बोले, जब गया में गए और ईश्वरपुरी का दर्शन किया तब महाप्रभु बोले इसी बात को,
प्रभु कहे गया यात्रा सफल अमार।
चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज मेरी यात्रा क्या हो गई, सफल हो गई।
जे क्षण देखी लो चरण तुमार,
जिस समय मैंने आपके चरण देख लिए, आपका दर्शन कर लिया, मेरी यात्रा सफल।
तुम्हारे दर्शन है कोटि पितृगण,
आपके दर्शन मात्र से मेरे करोड़ों पितरों का क्या हो गया, उद्धार हो गया। और इस बात को बलि महाराज ने वामन देव के दर्शन में बोला है, अज्ञ में पावितम कुलम, आज मेरा कुल धन्य हो गया कि हे वामन देव आपका मैंने दर्शन कर लिया। भगवान का दर्शन या फिर ये भगवान जिसके हृदय में है, ऐसे भक्त का दर्शन जीवन की सफलता है कि हमारे पितरों का भी उद्धार कर देती है। कई शास्त्रों के इन श्लोकों से आप इस भाव को सत्य सिद्धांत के अंतर्गत ला सकते हो। रामानंद राय तो बड़े प्रेम से कह रहे कि आज मेरा जन्म सफल हो गया।
सार्वभौम तोमार कृपा तार यही चिन्ह, अस्पृश्य स्पर्शिले हया तार प्रेमाधीन।
अरे सार्वभौम भट्टाचार्य ने आज मेरे पर बढ़िया कृपा की, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और आप उसकी आज्ञा मानकर मैं जो अस्पृश्य हूं, मैं स्पर्श के लायक नहीं हूं, अदृश्य हूं, ऐसे शूद्र को भी आपने क्या कर लिया, भुजाओं में भर लिया, प्रेम से मुझे आलिंगन में भर लिया, जो मुझे छूना नहीं चाहिए। एक सन्यासी होकर आपको मुझे नहीं छूना चाहिए, लेकिन आपने मुझे छुआ, आपने मुझे प्रेम दिया, किसकी कृपा,
सार्वभौम के कारण।
देखो ये भी इनकी महानता है। परीक्षित गंगा के तट पर बोलते हैं कि सुखदेव जी आप मुझे कथा कहने आए ना, ये मेरे पितरों मेरे पांडवों का, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं, मैंने तो एक ऋषि के गले में सर डाला जो मेरे कुल को कलंकित करने वाला कर्म था, लेकिन आप जैसे साधु मुझे भागवत कथा सुनाने आए हैं। कृष्ण अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं और मेरे दादा परदादा क्या थे, भक्त थे। परीक्षित बोले हैं 18-19 अध्याय में, कृष्ण पांडु सुत प्रिय प्रत्यस्य प्रीत्यर्थ, और उस पितरों की प्रीति के कारण आप मुझे कथा सुनाने आए। ये सत्य है सिद्धांत कि भगवान भक्त की कृपा, भक्त के संबंध के नाते हम पर कृपा करते हैं। इसीलिए दीक्षा, हमें किसी का हो जाना है, प्रभुपाद का, उसकी परंपरा का बन जाना है, ताकि हमारे में कुछ कमी गलती कुछ भी हो, प्रभुपाद के नाते गिरधारी को हमें अपनाना ही पड़ेगा। भले हम अस्पृश्य हो, अदृश्य हो, कैसे भी हो, लेकिन जिसके है, जिसकी शरण में है, वो तो ऐसा नहीं है। और भगवान अपने भक्तों से, इसीलिए वो नारद मणिगिरी वाला जो प्रसंग है दामोदर, भगवान जब घिसटते हुए घसीडा राम बने, भगवान घसीडा राम सार्वभौम घसीटते हुए मृदन उखल लेकर जा ही रहे थे ना, क्यों गए? तब कहते हैं कि देवर्षि में प्रियतमो, इन दोनों ने तो कभी सोलह माला किया नहीं था, इसी जो नलकुवर मणिग्रीव है उन्हें तो न करने लायक काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे उन लोगों का उद्धार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नारद बोला है, नारद जी ने कहा है कि वासुदेव के आंगने में वृक्ष बनोगे, नंद भवन में शरद सौ ऋतु जाएगा, कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। और भक्ति भविष्यति, और उद्धार ही नहीं, जैसे असुरों को मारा ऐसे मोक्ष नहीं देना है, क्या देना पड़ेगा? भक्ति। इसलिए तो सत्यवर जी कहते हैं कुबेर आत्म जो बद्ध मृत्येव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो, मुक्त नहीं किया, क्या किया? भक्ति दिया। तथा प्रेमा भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्ष गृहो मेस्ति दामोदरे, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं वही प्रेमा भक्ति चाहता हूं जो आपने नलकुवर मणिग्रीव को दिया। क्यों दिया? नारद बोले इसलिए दिया। अस्पृश्य व्यक्ति भी जब महापुरुष भगवान अपनाए, उसका प्रेमी अपनाए, तो महान हो जाता है। मैं याद कराऊं रामायण के एक प्रसंग को आपको, निषाद राज शूद्र जाति के हैं, निषाद ना गु, भरत जी जब मिलने गए चित्रकूट, तब भरत जी को पता चला कि राम इसको मिले थे, राम का सेवा किया था, सखा है, भरत तो प्रेमी है ना, इसलिए दौड़े और उसको, अब जो वशिष्ठ महाराज ब्राह्मण है वो सोच रहे है, क्योंकि ये तो शूद्र है ना बाह्य रूप से, लेकिन भरत तो प्रेमी है। अब देखो एक ब्राह्मण, बड़ी तात्विक चर्चा है वहां पर, और दृश्य भी बड़ा भजन हो गया, करे तो क्या करे, और ये तो नहीं चाहते थे हमें आलिंगन करे, ये तो दास सखा नहीं थे, दास भाव में ही थे बेचारा, लेकिन भरत तो भरत है ना, प्रेमी था। और जब रिटर्न आए तब तो इसने भी अपनाया, जब चित्रकूट में मिलन हुआ तो ये जो रघुवंशी के कुल गुरु वशिष्ठ, उसने भी निषाद को अखबार में लिया, रामायण में वर्णन है। तब निषाद बोला एक बात, जो बोला जैसे यहां पर कह रहे अस्पृश्य अदृश्य, पर आपने मुझे प्रेम दे दिया, अखबार में भर लिया सार्वभौम के कारण। तो निषाद वहां बोलते राम जब, जब राम ने मुझे अपना माना, राम कियो आपन जब ही ते भय हूं भुवन भूषण तब ही, जब राम ने मुझे अखबार में भर लिया तब से मैं देखने, मैं ऐसा व्यक्ति था कि कहीं चलो ना मेरी परछाई गिरे ना, और परछाई में किसका पांव रख रहा है ना, वो गंगा में नहाने जाता था। जातु साह ले ही चीचा, जैसे जगाए मदाए, चैतन्य भागवत पढ़िए, मदाए रोते रोते बोला है इस बात को कि हम लोग जहां गंगा के घाट पर जाते थे तो लोग हमसे भागते थे दूर, और हमारे को देखते ही वो लोग क्या करते थे गंगा में, और आज वो लोग हमें दंडवत मार रहे हैं गौरांग की कृपा से, क्या नहीं हो जाता। सार्वभौम भट्टाचार्य खुद बोले हैं पुरी में कि मैं कैसा व्यक्ति था, अद्वैतवादी, जहां देखो वहां तर कांव कांव करता रहता था कौवे की तरह, और आपने हमें क्या कर दिया, मैं कौवा था आपने गरुड़ बना दिया। महाप्रभु बिना कौन है न दयामय, काकेर गरुड़ करे एछे कौन होय, तार्की का श्रीगाल मध्य भेव भेव करी ते मुखे आज आमी करी हरी हरी विदाउट प्रेमनंदे। भक्त की कृपा से क्या नहीं हो सकता है। भगवान अभी चैतन्य भक्त रूप में है, इसलिए भगवान रूप में जो काम नहीं कर पाए ना वो भक्त कर दिया, भक्त रूप, और प्रभुपाद ने तो क्रांति ही कर दिया। तो ऐसे ही थे सब पशु जीवन वाले, लेकिन सब आज क्या कर रहे हैं, हरी हरी कर रहे हैं। भक्त कर सकता है ये कमाल भगवान की कृपा से, क्या संभव। लेकिन जब भगवान अपना ले तब तो शिव ब्रह्मा भी अपना लेते, जाकर राम की कृपा हो जाए। सानुकूले जगन्नाथम सानुकूले जगत त्रयम, संस्कृत का श्लोक है, और प्रतिकूले जगन्नाथम प्रतिकूले जगत त्रयम, सीधा उल्टा चलेगा ये तो। राम जिसे मुंह फेर ले गया काम से वो तो कोई बचा नहीं पाएगा। तो अनुकूलता हमें इसकी पानी है, और ये अनुकूलता ये कृपा भक्त की कृपा से चलती है। भगवत कृपा भक्त कृपा का अनुगमन करती है, और इसीलिए हम भक्तों को याद रखना चाहिए कि आज हम कुछ जप कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये लक्ष्मी को जो सौभाग्य जो नित्य पार्षदों को मिलता है वो हमें आज मिल रहा है, ये प्रभुपाद की इस्कान के भक्तों की कृपा के कारण मिल रहा है। और इसलिए इससे हमें कुछ मिल जाए ना, पद नाम धन, तो इसके अहंकार में आकर इस मूल को ही नहीं काट देना चाहिए। याद रखने लायक बात, कुछ लोग नहीं समझ रहे इस बात को। जहां से जल मिलता है, वृक्ष तभी फल फूल सकता है जब उसकी जड़ें उसका मूल जमीन में हो। अगर वहीं से कट गया तो ज्यादा हरा भरा रहने वाला ज्यादा दिन है नहीं, ये याद रखना चाहिए। जिससे पाया है, जिसकी कृपा से पाया है, उसको भूलना और उसका ही उल्टा करना, ऐसे लोग आप कभी सोच सकते हो कि सपने में भी कृपा के या पात्र बन सकते हैं? मूर्खों के द्वारा प्रशंसा मिल जाएगी, वो तो बहुत सस्ती वस्तु है। मूर्ख लोग जिसको कुछ नहीं पता वो तो वाह वाह प्रभु जी करेंगे करेंगे, लेकिन इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। तो हमें देखकर बुद्धिमान बनना पड़ेगा, किस किस वे में हमें चलना है। कहां तुम्हें साक्षात नारायण, इसके आगे वाला श्लोक, कहां तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण, कहां मुई राज सेवी विषयी शूद्राधाम, मोर स्पर्श ना करिल घृणा वेद भय, मोर दर्शन तुमा वेदे निषेधाय। वेद मना करता है सन्यासी को, शूद्र को नहीं सुना चाहिए। और आप सन्यासी नहीं है मैं समझ रहा हूं, आप तो साक्षात नारायण है, और मैं एकदम शूद्र अधम तुच्छ जीव, आप क्यों हमें छू रहे हैं? ये बात सुदामा ने बोला है, और इसी बात को वासुदेव विप्र ने भी बोला था महाप्रभु को पहले दिन, जिस लीला को हमने कहा था आपको, सुदामा भागवत जी में 10:81-19 वो कहते हैं कि ब्रह्म बंधु इति स्मह, मैं ब्रह्म बंधु हूं, ब्राह्मण नहीं, अब ब्राह्मण से गिरा हुआ ब्रह्म बंधु, लेकिन क्वा कृष्ण श्री निकेतन, और कहां लक्ष्मियों के नाथ, लेकिन बाहुव्या परिरम, पूरी द्वारका देखती रह गई और उसने आके मुझे अखबार में भर लिया। कितना करुणावान है मेरा सखा। यहां पर भी यही मूड है इनका, कहां आप ईश्वर और कहां मैं शूद्र, और वेद भी मना करता है, फिर आप क्यों करते हैं? तुम्हार कृपा मोहि निंद कर्मा, आप साक्षात ईश्वर होते हुए भी आपका मर्म मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और आप मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं, आप परम पवित्र दयालु है, कृपालु है। रामानंद राय बहुत सारी बातें बोलते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ना आज कितनी अच्छी बात हो गई कि अमर संगे ब्राह्मण आदि सहस्त्रे कजन, 41 नंबर, अमर संगे मेरे साथ जितने भी ये ब्राह्मण है ना, उन सब का आज उद्धार हो गया। क्यों? तुम्हारे दर्शन सबार द्रवी भूत मन, आपके दर्शन से आज सारे ब्राह्मण पवित्र हो गए। क्यों? 41 नंबर आया, अब आएगा। अमर संगे ब्राह्मण आदि सहस्त्रे कजन, तुमार दर्शन सबार द्रवी भूत मन, कृष्ण कृष्ण नाम सुनी सबार स्थाने, सबार संग पुलकित अश्रु नेत्र, आकृते प्रकृते तुमार ईश्वर लक्षण। चाहे बाहर से आकृति की बात करे या प्रभाव स्वभाव प्रकृति की बात करे, आप ईश्वर हो ये दिख गया, जीवे संभव नहीं, ईश्वर यही जो आप में जो गुण दिख रहा है वो जीव में संभव नहीं है। भक्तों क्या हुआ वहां पर, जो ब्राह्मण थे उसके मुख से भी क्या निकलने लगा, कृष्ण कृष्ण निकलने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का प्रभाव रामानंद राय ने देखा, वही बोला। तो अब क्या कर रहे हैं रामानंद राय, चैतन्य महाप्रभु के सब गुण गाए, आप भगवान हो, आपकी भक्ति का ये प्रभाव, आपका ये स्वभाव, और अब चैतन्य महाप्रभु जी रामानंद राय के गुण गाएंगे। राय कहे गौर प्रभु कहे तुमी महाभागवता। अब इसने जब राय ने ऐसा कहा तो चैतन्य महाप्रभु का सुनो सुनो बस करो, प्रभु कहे तुमी भागवतो उत्तम, तुम्हारे दर्शन ने सब द्रवी, ये जो द्रवीभूत हो गए ना, ये पत्थर भी पिघल गए ये सब प्रेमी बन गए ब्राह्मण, सब कृष्ण कृष्ण कर रहे तुम्हारे दर्शन से, और ये कह रहे तुम्हारे दर्शन, हम होते कहते तो मैं हूं ना ये दोनों एक दूसरे को कह रहे कि आपके दर्शन से, वो बोला आप भागवतों में महा उत्तम भागवत हो। अन्यर की कथा, देखो आगे कहते हैं, दूसरों की बात छोड़ो, हामी मायावादी सन्यासी, ऐसे हो तो केशव भारती से सन्यास लिए बाह्य रूप से, बोले मैं मायावादी सन्यासी और आमी तुम्हारे स्पर्श से कृष्ण प्रेम भासी, तुम्हारे स्पर्श से मेरे हृदय भी, मेरे अंदर भी कृष्ण प्रेम का फुवारा शावर हो रहा है। इन लोगों की बात क्या कहे रामानंद राय, तुम इतने प्रेमी भक्त हो कि तुम्हारे दर्शन स्पर्श से मेरे अंदर भी कृष्ण प्रेम नाच रहा है। दूसरे की बात क्या कहे, यही जानी कठिन मोर हृदय शोती थे, सार्वभौम कहिल तुम्हार मिली थे, यही मत दोहे स्तुति करे दोहार। इस तरह दोनों एक दूसरे का स्तुति गुण कह रहे हैं और दोहे कोहार दर्शन आनंदित मन, दोनों आनंद में भी हो रहे हैं। हेन काले एक वैदिक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण आया, प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किया और फिर कहा एक 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 निमंत्रण, एक आमंत्रण, मेरा निवेदन सुनिए। बोले क्या, आप सन्यासी हो लगते हो, आए हो यहाँ हमारे घर प्रसाद के लिए, हम लोग तो आते हैं साधु लोग तो चले जाते कहीं बोल लगे प्रसाद के लिए, ये सामने से निवेदन गया हमारे घर प्रसाद प्रसाद के लिए पधारो। निमंत्रण मानी लो तारो वैष्णव जानी, वो वैष्णव ब्राह्मण था, तिलक कंठी वैष्णव चिन्ह दिख रहा था भाव, इसलिए महाप्रभु ने मान लिया। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि हम भक्तों को कोई लोग आमंत्रण दे तो थोड़ा देखना चाहिए कि भाई महाप्रसाद मिलेगा कि क्या मिलेगा, नहीं तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है ना। तो सब जगह राधे राधे नहीं करना चाहिए, हरिबोल घर देखना चाहिए क्या है, क्या है कि नहीं। हाँ नित्य सिद्धों के लिए तो कोई 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 प्रश्न ही नहीं है, लेकिन आप साधक अपने आप को मानते हो तो सावधान रहो, बाकी सिद्धों के लिए तो कोई नियम नहीं, वेद में भी नहीं है, नियम मानते नहीं सिद्ध लोग, सिद्ध मतलब नहीं मानना, यही अर्थ ले लिया आज लोग सिद्ध को जरूरत नहीं रहती नियम की, लेकिन आज क्या अर्थ हो गया, जो नहीं मानता वही सिद्ध है, कलयुग है ना घोर। अब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु अब जाना पड़ेगा, ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया, यहाँ पर भी टाइम हो गया, लेकिन हमें भी नीचे जाना पड़ेगा ना, जिस काम के लिए हम आए थे 7:30 बजे जो मूल काम, जिस भक्ति को हम बड़े दिल से करते हैं महाप्रसाद गोविंद, क्योंकि महाप्रभु को भी प्रसाद का ही आमंत्रण ये ब्राह्मण दे रहा है। लेकिन जाते जाते महाप्रभु क्या बोले ये सुन लेंगे। महाप्रभु कहे तुम्हार मुखे कृष्ण कथा सुनित हो मन, हे रामानंद राय मेरे मन में एक तीव्र लालसा है, इच्छा है क्या, तुम्हार मुखे कृष्ण कथा सुनित हो मन, तुम्हार मुखे कृष्ण मुखे कृष्ण कथा सुनीते हय मन, मुखे कृष्ण कथा पुनरपि पाइए न तुम्हार दर्शन, पुनरपि मन में एक इच्छा है कि मैं आपके मुख से भगवान कृष्ण की कथा को सुनूं। अगर अब फिर से आप कब मिलेंगे, आपका दर्शन फिर कब होगा, ऐसे भी आप लोग भी प्रसाद के लिए जाइए, लेकिन इसी भाव से कि कल आपकी चैतन्य महाप्रभु की कुछ कथा को, ऐसे मेरे मुख से तो अच्छा नहीं है लेकिन भक्तों के मुख से सुनेंगे, इस भाव में रहिए कि भक्तों के मुख से कृष्ण कथा। रामानंद राय को कितना भगवान चैतन्य बोल रहे हैं, ये भाव को समझना हमारी बुद्धि नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपके मुख से मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। लेकिन हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि हम भक्तों को सदैव ये लालसा रखनी चाहिए कि किसी भी शुद्ध वैष्णव के मुख से कृष्ण कथा सुने, क्योंकि इस बात को ही भागवत में सार का है, सम्यक व्यवसिता ते बुद्धि राजर्षि तव सत्तम, कृष्ण कथा सुनने के अलावा और कुछ नहीं करना, इस तरह का आपका निर्णय श्रेष्ठ है, सम्यक व्यवहार। जहां पर बुद्धि का एंड होना चाहिए, पर्यवसान होना चाहिए, वहां आपकी बुद्धि पहुंच चुकी है, ये सुखदेव जी ने बोल दिया। और भागवत का सार भी वासुदेव कथा रुचि है, और नहीं है तो श्रम एवं केवलम है। और आज महाप्रभु इसी को बोल रहे हैं कि आपके मुख से कथा सुनना है, इस तरह का मूड बनाना है हमें, जो महाप्रभु का मूड है। और ये रामानंद राय भी हृदय से चाहते थे, लेकिन अब क्या करें, नहीं चाहते, दोनों अलग होना नहीं चाहते, लेकिन होना पड़ेगा, क्योंकि घर जाना है प्रसाद लेना, इसको भी घर जाना प्रसाद, लेकिन दोनों का घर गएंगे प्रसाद लेंगे, लेकिन मन कहां है, जैसे ही प्रसाद खत्म हो, जैसे ही काम पूरा, दोनों आके फिर मिले। तो ये राय रामानंद संवाद रोज कब होता था मालूम है, प्रसाद के बाद रात को, शाम को। हमारा भाई सत्संग शाम का समय है, लेकिन प्रसाद बाद में है, क्योंकि पहले देते तो आप सो जाते इसलिए प्रसाद ओके, थोड़ा क्रम उल्टा है, वो प्रसाद के बाद कथा होता था, हमारा कथा के बाद प्रसाद है, बस बाकी टाइम सेम है। और दूसरा एक अंतर है, क्या कल चर्चा करेंगे इसकी, वो दोनों अकेले चर्चा कर रहे हैं और हम लोग तो यहाँ 500-600 लोग हैं, फिर भी एक है, इसको कल सुनते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बहुत बड़ा भाग्य है, इस गिरीश गुडाकेश प्रभु यहाँ विराजमान है, उनके सामने बोलना हम उनसे ही सीखे हैं, फिर भी इनका आज्ञा प्रेम है, फिर भी कुछ त्रुटि हो तो आप क्षमा करिएगा। और धन्यवाद देते हैं हमारे वनमाली प्रभु जी को, चैन गोपी प्रभु को, सभी भक्तों को, आप बहुत आगे महान हो फिर भी प्रेम से आते हो, बस आशीर्वाद रखो कि इसी तरह हरिगुण गाते रहे। धन्यवाद।